आपका शुक्रिया भाई नेवल, शुक्रिया। खुदावंद के घर में वापिस होना ये बहुत ही अच्छा है, कोई मसला नहीं। मैं चाहे जहाँ भी जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा टैबरनेकल में वापिस आकर लुत्फंदोज होता हूँ। इस पुरानी छोटी सी जगह के मुतालिक कुछ है, इसलिए मैं वापिस आना पसंद करता हूँ। ये जरा ऐसा है, ये मेरा पहला और इकलौता चर्च है जहाँ मैंने कभी पासबानी की है, और यहाँ जरा दोबारा वापिस आना बड़ा अच्छा लगता है। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि उस अजीम सुबह जब सूरज चमकने से इनकार कर देगा और सितारे अपनी रोशनी खो बैठेंगे, मैं यकीन करता हूँ उस दिन इस टैबरनेकल से कुछ लोग वहाँ मौजूद होंगे जो कि बरे के खून से धुल चुके हैं। मैं उस वक्त के लिए मुंतजिर हूँ। अब जैसे ही मैं कमरे से होते हुए आया और मैं पीछे बहन ऑर्गन ब्राइड से मिला, और वो मुझे बता रही थी कि यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि किंगस्टन की इबादत में थे, जो कि इस वक्त यहाँ तशरीफ फरमा है, और इसलिए मैं आप लोगों को एक गवाही के तौर पर यहाँ पाकर बहुत खुश हूँ। वो जहाँ कहीं भी है, जो कि किंगस्टन जमैका की एक इबादत में हाजिर थे। क्या आप अपने हाथ खड़े करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल पीछे वापसी पर मौजूद है। ठीक है, ये अच्छी बात है। मैंने ओरल के पैगाम का तारफी कार्ड देखा। मेरा अंदाजा है कि आप लोग पहले ही उसकी इबादत का ऐलान कर चुके हैं। गुजरे कल तक मुझे भी उसकी तारीखों के मुतालिक मालूम नहीं था। मेरा ख्याल है कि ये 6 से शुरू है, क्या ऐसा ही नहीं? भाई रॉबर्ट्स की लॉइसविल में 6 से लेकर 15 तक इबादत है। अब जाइएगा और उसे सुनिएगा। भाई रॉबर्ट्स मेरा एक लंगोटिया दोस्त है और मसीह का एक हकीकी खादम है, और मुझे यकीन है कि हर रोज आप उसके पैगामात से लुत्फंदोज होंगे, और वो बीमारों के लिए दुआ भी करता है, और मुझे यकीन है कि आप खुदा को जुम्बश करते देखेंगे, क्योंकि वो ईमान का एक जंगजू है। भाई रॉबर्ट्स वो इंसान है जिसे खुदा कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है, और उसकी खिदमत बहुत मशहूर हो चुकी है। मुझे याद है जब मैं पहली मरतबा भाई रॉबर्ट से मिला तो वो छोटे से खस्ता हाल साहिबान सेंट लुइस मिसौरी में था, और मैं शायद कंसास के शहर मिसौरी में नहीं था, और मैं भी कंसास शहर में कंसास के एक ऑडिटोरियम में था, और वो मेरे सामने की नशिस्त पर बैठा हुआ था। इबादत खत्म हो जाने के बाद हम पिछली जानिब गए और गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मेरा तारुफ उससे करवाया। वो मुझसे बढ़कर जवान है, ओरल अपनी 40 की इब्तदा में है, और उसने कहा, क्या आप ख्याल करते हैं कि खुदा बीमारों के लिए मेरी दुआ सुनेगा? मैंने कहा, भाई वो किसी भी शख्स की दुआ सुनेगा जो दुआ करेगा। खैर उसने शुरू किया और उसने कहा, तो फिर मैं चलता हूँ। और वो बड़ा ही ज़हीन इंसान है, और कॉलेज में उसने 4 साल तक नफ्सियात की तालीम हासिल की है, और मुझे यकीन है कि वो एक शानदार इंसान है, और उसने एक जगह भी ली है जहां अब उसका मशवरा देने वाला स्टाफ और दूसरे लोग भी उसके गिर्द होते हैं। उस वक्त तक जब वो बोलता है तो वो इससे तदबीर निकालता है, और मुझे यकीन है कि आप वाकई लुत्फंदोज होंगे। और इसी तरह अब मैं आप लोगों को जरा एक छोटी सी रिपोर्ट देना पसंद करूंगा। जमैका और पोर्टोरिको की छोटी सी आजजाना इबादत में हमारे खुदावंद ने क्या क्या किया। ये अजीब बात है कि मैं वहाँ गया तो बहुत सारी कॉल्स आई, और जैसा कि लियू यहाँ जानता है कि फोन पर और एक हफ्ते की भाग दौड़ में वहाँ वाकई सचमुच सैकड़ों जगहों से इबादत के लिए कॉल्स मौसूल हुई। लेकिन मैं आज तक पसंद करता हूँ कि मेरी रहनुमाई हो, भले मैं कहीं भी जाऊँ, मैं ऐसा करना पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर कोई आदमी मुझे लेने आता है और अगर मैं जाता हूँ तो मैं उस चर्च या उस तंजीम के नाम में जाता हूँ। भाई नेवल मुझे कहता है कि मुझे जाना चाहिए, और अगर मैं जाता हूँ तो फिर मैं भाई नेवल के नाम से जाता हूँ, लेकिन मैं तो तब जाना पसंद करता हूँ जब मुझे यस्सू बेचता है। इसलिए फिर आप भी लोगों से मुलाकात के लिए खुदावन यस्सू के नाम से जाएं। मैं जरा थका हुआ था और बिस्तर पर लेटा हुआ था, और सोच में था कि इस वादी को जल्दी या देर से छोड़ूं, क्योंकि ये जरा मेरे गले को नुकसान दे रही है, और किसी ऐसी जगह पर मैं मुश्किल से भी काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस वादी को छोड़ना ही पड़ेगा। मैं यहाँ से दूर भी जा सकता हूँ और वापस भी जा सकता हूँ। जब मैं और लियो फ्लोरिडा की दलदली जगहों से कुछ रोज पहले आए तो 40 मील बाहर तक गला मुकम्मल ठीक था, और लुइसविल में दाखिल होते ही 40 मील के अंदर یہ پھر خراب ہو گیا۔ بھائی بینکس ووڈ آج صبح یہیں کہیں ہوں گے، اور کچھ دن پہلے جب ہم کنگسٹن اور پوروٹیکو سے آ رہے تھے تو میرا گلا مکمل درست تھا، اور جب میں ہوائی جہاز سے نیچے اترا تب بھی یہ ٹھیک تھا، اور اس سے پہلے کہ ہم جیفرسن ویل میں پہنچ پاتے یہ دوبارہ خراب ہو گیا۔ غور کریں، یہیں وہ وادی ہے، یہ ہوا میں بیکٹیریا ہے یا پھر یہ خدا ہے، دونوں میں سے ایک ہے جو مجھے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس میں اسے سمجھ نہیں پایا، حالانکہ میں نے دعا کی اور کئی مرتبہ پوچھا، اور بس میں جاگ گیا، اور یہ تقریباً صبح کے 3 بجے کا وقت تھا، اور میری بیوی اور چھوٹا لڑکا سوئے ہوئے تھے، اور میں اٹھ کر بستر کی ایک جانب ہو گیا، اور میں نے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھا جو کہ بہت ہی وسیع جگہ پر جمع تھی، اور میں نے بلی پول سے کہا تم وہاں جاؤ اور ان لوگوں کو دعائیا کارڈ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابا جان، اور کچھ ہی منٹوں میں وہ واپس آ گیا اور کہا آپ ان لوگوں کو دعائیا کارڈ نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ آدمی یہاں کھڑا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ یہاں موجود تھا، اور میں نے کہا ہر ایک جو دعائیا کارڈ لینا چاہتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اور کہا میں اس کو دعائیا کارڈ دینے گیا تھا پر وہ کہیں اور چلا گیا تھا، اور پھر جب میں وہاں گیا اور وہ پھر کہیں اور چلا گیا، اب یہاں پر وہ واپس موجود ہے۔ کہا یہاں تک کہ ایک دعائیا کارڈ بھی میں نہیں دے سکا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بلی، تمہیں دعائیا کارڈ نہیں دینے ہوں گے، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں اور ہر کوئی کارڈ حاصل کرنا چاہتا ہے، دعائیا کارڈ فساد کا سبب ہو سکتے ہیں، تم دیکھو اور انہیں ترتیب سے رکھو۔ میں نے کہا ہو، میں وہاں ہر ایک کو لے سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں جو وہاں اس رقبے میں ہیں جن کو میں نے لیا ہے، اور انہیں قطار میں کروں اور ان کے لیے ایک ایک کر کے دعا کروں۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ دائیں جانب مڑا اور مجھ سے دور چلا گیا، اور میں اس راستے کی طرف مڑا جس راستے کو وہ گیا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا، اور آسمان سے نیچے آتی ہوئی ایک آواز کو سنا، اور اس نے کہا کہ میں اسی وقت سے تجھے سر بلند کرنا شروع کروں گا۔ اور میں نے جو نظر کی تو میں نے لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ ہر طرف سے ہجوم کی شکل میں چلے آ رہے تھے، اور بھائی رابرٹس کا نام پکارا گیا اور کہا اب بھائی اورل رابرٹس آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور میں نے کہا کیسے میں بھائی رابرٹس سے سلام کہوں گا؟ آواز آئی اسی طرح جس طرح وہ تجھ سے سلام کہے گا۔ خیر میں نے دیکھا کہ بھائی رابرٹس سیاہ رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے آ رہے ہیں، اور ایک چھوٹی سی ہیٹ بالکل جس طرح بینک کروسبی پہنے ہیں، جسے وہ تھوڑا اوپر کر کے موڑتے اور تھوڑی نیچے کھینچتے ہیں، جو کہ ایک چھوٹا سا سیاہ ہیٹ تھا۔ میں ایک قسم سے اوپر کی جانب تھا۔ اس نے اوپر نگاہ کی اور کہا کیسے ہو بھائی برینم؟ میں نے کہا کیسے ہو بھائی رابرٹس، اور اس سے ہاتھ ملایا۔ کہا تمہارے پاس ایک اچھی بھیڑ ہے۔ میں نے کہا بھائی رابرٹس کافی بڑی بھیڑ ہے، اور وہ مڑا اور اس راستے کو چلا گیا جہاں بلی گیا تھا، یعنی دائیں جانب۔ اور میں نے سوچا میں ان لوگوں سے کیسے بات کروں، اور میں نے ہر طرف سے ایک ایسے مقام کو معلوم کرنے کی کوشش کی، اور میں کچھ اس حالت میں تھا جیسے کچھ نچلی سطح ہو، اس لیے میں نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ ان سے کہاں سے بات کروں۔ اور کسی نے کہا ٹھیک ہے یہاں اوپر آ جائیں، اور میں نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں دیکھ سکتے، وہاں جانا بہتر نہیں، اور میں نے اس جگہ سے شروع کر دیا۔ اور تب مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے کہا کہ سب سے اہم بات میرے لیے کرنے کے لیے یہ ہے کہ میں ہمیشہ خدا کے سامنے اور اس کے بچوں کے سامنے دل سے فروتن رہوں۔ اور پھر میں رویا سے باہر آ گیا، اور میں نے سوچا اس رویا کا کیا مطلب ہے؟ شاید اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی خاص جگہ جا رہے ہیں، یا پھر اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض اوقات رویا میں وہ نہیں بتاتا کہ آپ کہاں ہیں، وہ صرف بولتا ہے اور آپ صرف سنتے ہیں۔ اس طرح یہ تمثیل کی طرح ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو بائبل پڑھتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اور جب میں سامنے کے کمرے میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، اور یہ تقریباً صبح کے 3:30 یا پھر 4 بجے کا وقت تھا، اور میں دراصل نیند ہی میں تھا، میں دوبارہ گیا اور لیٹ گیا، اور میں نے ایک خواب دیکھا، اور یہ بڑا ہی عجیب خواب تھا۔ اور آپ میں سے زیادہ تر لوگ مینیجرز میں سے جیک مور، بھائی جیک مور کو جانتے ہیں، میں بھی ان کو سالوں سے جانتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں ان کی بیٹی کے ساتھ ڈیٹ پر تھا، ایک لڑکی جس کی عمر تقریباً 17 سال ہے، اور اس کے ہاتھ کو پکڑے لیے جا رہا تھا، یعنی جیکی اس کو اوپر پہاڑی پر لے کر جا رہا تھا۔ خیر میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ بہت ہی چھوٹی بچی تھی، اور میں اسے اوپر پہاڑی پر لے جا رہا تھا، اور میں اس لڑکی کو لے کر تقریباً شہر سے 3 بلاک تک اوپر پہاڑی پر لے گیا، اور ہم ایک بڑے درخت کے نیچے آ گئے، اور وہ وہاں بیٹھ گئی، और बिल्कुल उसी तरह बहुत सारी 13 से 19 साल की लड़कियां आज उन स्कर्ट्स को पहनती हैं। आप जानते हैं कि ये बाहर की जानी फूला हुआ होता है, और इसने भी इन ही इकसाम के स्कर्ट में से एक पहना हुआ था, और उसने स्कर्ट को लिया और इस तरह उसे फैला दिया और बैठ गई। और जैसे कि नौजवान नस्ल अक्सर एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, उसने अपने हाथों को इस तरह समेट लिया और ऊपर आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। खैर, जैकी एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसका बहुत बड़ा मुंह और बहुत बड़ी आंखें हैं, और सुर्खी माइल जर्द रंग के बाल हैं। बहुत ज्यादा जाजब नजर नहीं, लेकिन वो एक हकीकी छोटी सी लड़की है, और मैंने उसकी बड़ी आंखों को देखा और वो आसमान की तरफ निगाह लगाए थी, और कैसे उसकी आंखों में आसमान का अक्स था। खैर, मैं उससे तकरीबन 5 फीट दूर गया और इस तरह एक जानी पहलू किए हुए लेट गया, और एक तिनका लिया और उसे अपने मुंह में रख लिया और उस तिनके को चबाना शुरू कर दिया। और मैंने सोचना शुरू किया कि मैं यहाँ ऊपर क्या कर रहा हूँ, क्यों मैं एक बूढ़ा आदमी होकर इस जवान लड़की के साथ क्यों हूँ, क्यों? मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे हैं, और मैं इस जवान लड़की के साथ यहाँ ऊपर कोई सरोकार रखना नहीं चाहता। मैंने ऊपर उठना शुरू किया, और जब मैं उठ खड़ा हुआ तो दरख्त से एक आवाज आई और कहा, ये एक निशान और एक मकसद के लिए है। और मैं जाग गया और मैं तकरीबन चिल्ला उठा कि ये एक भयानक ख्वाब है। मैंने सोचा, उफ, ताज्जुब है, क्या ये इसका मतलब ये है कि मैं गुमराह होने जा रहा हूँ या फिर मेरे साथ कुछ होने वाला है। खैर, मैंने सोचा कि अगर मैं अपने ही जहन को इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा, बस मैं सिर्फ खुदा का इंतजार करूँगा। और मैंने दुआ करना शुरू कर दी। मैंने कहा, खुदावन, क्या इस ख्वाब का ताल्लुक उस रोया से है जो रात के पहले पैर में आई थी, या इसका क्या मतलब है? इसके बाद कुछ वक्त के लिए इंतजार करता रहा, शायद एक घंटा, जबकि मेरी बीवी उठकर नाश्ता तैयार कर रही थी। फिर आवाज दोबारा आई और कहा, किंगस्टन में जा और तुझे बताया जाएगा कि वहाँ क्या करना है। बस मैं फौरन किंगस्टन को चला गया, और जुमे रात की दोपहर को उन्हें मालूम हो गया कि मैं जुमे को वहाँ हूँगा। बस यही सारी इश्तहारबाजी थी जो हमने की थी। और मैं हजूम का अंदाजा लगाने और इस काम को करने में अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ज्यादा कह देता हूँ। लेकिन पहली रात मैं कहना चाहूँगा कि हम तकरीबन 1200 लोग वहाँ बाहर मौजूद थे, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की तशहीर थी। और अगले दिन उन्होंने पैगाम रसानों को 4 मील दौड़ाना शुरू कर दिया। पहाड़ों पर रबते करें, एक पैगाम रसा 4 घंटे रबते करेगा, और दूसरे पैगाम रसा को पहाड़ों के ऊपर जाने दो। और दूसरी रात तकरीबन 5,000 थे, और तीसरी रात इसका अंदाजा लगाया गया तो 15,000 या 20,000 लोग थे, और वहाँ हजारों हजारों की तादाद में लोग खुदावंद के पास आए। और वो रोया, छोटी सी कलीसिया थी और लड़की एक कुंवारी थी, सिर्फ एक बच्ची, और उसका मतलब कलीसिया की पाक दामनी है। और तकरीबन शहर से 3 ब्लॉक ऊपर पहाड़ी तक, ये 3 दिन थे जो मैंने खिदमत की, और मेरी खिदमत के वसीले इस छोटी कुंवारी कलीसिया ने जहाँ वो थी उस बुलंदी से खुदा की चीजें हासिल की, उस वक्त उसने पूरे जजीरे को हिला के रख दिया। और हो, जब खादम और लोग इसके गिर्द रो रहे और माफी मांग रहे और कायल हो रहे थे, जबकि सरकार ने कहा कि जरा 1-2 रातें और इबादत करें, हम वहाँ से पोर्टोरिको चले गए, और वहाँ हम बहुत बड़ी और बुलंदो बाला फतायाबी से हमकनार हुए, और हजार हजार लोग वहाँ जमा हुए। ताहम जब उसका अंदाजा लगाया गया तो ये कोई 40,000 जाने थी जो खुदावंद यीशु के पास चली आई। और उसी वक्त जाते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये बात मैं अपनी कलीसिया के लिए कहूँगा, लेकिन मैं अवामुल नास में ऐसी बात नहीं करता जहाँ इर्द गिर्द घर के लोग नहीं होते, शायद ये देखने में गलत हो, लेकिन मेरे पास यहाँ एक कागज के टुकड़े पर जज का नाम मौजूद है, और उसने और उसके अमले ने जब हम वहां से जा रहे थे तो ये बातचीत की, और मैं, उसने कहा था, हम इस जजीरे में आए हुए मुख्तलिफ खादमों की इज्जत करते हैं। उसने कहा कि अभी हाल ही में मिस्टर बिली ग्राम ने इस जजीरे को छोड़ा है और कहा कि हमने एक जलाली इबादत की थी। उसने कहा, लेकिन बिली ग्राम हमारे लिए बिल्कुल वही खुशखबरी लाया जो हमेशा हम सुनते हैं। उसने कहा, फिर हमने इस जजीरे में मिस्टर रॉबर्ट्स की बहुत इज्जत अफजाई की। उसने कहा, मिस्टर रॉबर्ट्स ने यहाँ 3 रोजा अजीम इबादत कराई, लेकिन कहा होटल के अखराजात बहुत ही ज्यादा थे। कहा $35,000 3 रातों के लिए होटल के अखराजात थे। उसने कहा, फिर मिस्टर ऑसबोर्न यहाँ थे जो कि मसीह के अजीम खादम हैं। लेकिन कहा, जब मिस्टर ऑसबोर्न चले गए तो वहाँ कुछ ऐसा लगा कि सब कुछ ही चला गया है। कहा, ये ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन कहा, हमने इस इबादत में तवज्जो दी है कि हकीकत में मुश्किल से कोई भी प्लेटफॉर्म पर भाई ब्रहनम की तरह दुआ करने वाला नहीं था। लेकिन कहा, इबादत खत्म हो जाने के बाद हमने सामीन में से पुरानी कुर्सियां और डंडों और बाकी चीजों से ट्रक को भरा है। उसने कहा, उस वक्त एक इंसान नहीं बल्कि खुदा हमारे दरमियान उतरा था, ये उसने कहा। मैंने कहा, मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई बल्कि ये आपकी दुआएं हैं जो आपने अपने हाथ एक दूसरे पर रखे थे, और वो लोग शायद 1 दर्जन या 2 दर्जन को प्लेटफॉर्म पर ले आए, और जब दिलों के बेद आया हुए तो वो लोग चीखो पुकार करने लगे। और हमारा क्याम 4th क्लास होटल में था और हमने अपने तमाम रास्ते के और दूसरे अखराजात खुद अदा किए थे। आपने खुद ऐसा करने में मेरी मदद की, आप और आपकी दैयकियों के साथ जो आप मुझे बेचते हैं, यही है जिसने सब कुछ सरंजाम दिया। और मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि ये सब कुछ जो होता है इसमें आपका हिस्सा है, और उस अजीम जलाली दिन में जो आने को है खुदा आपको इसका अजर देगा। देखें, आपके पास कुछ नहीं था। अगर कोई शख्स खुद ब खुद जाता और कोई काम सर अंजाम देता है तो फिर आप देखें, और जब वो शख्स चला जाता है तो वो सोचते हैं सब कुछ रुखसत हो गया है और खुदा हमें छोड़ गया है। खुदा आपको नहीं छोड़ता, वो हमेशा आपके साथ रहता है। गौर करें, इसमें आप भी उतना ही शामिल हैं जितना कोई भी शख्स। शायद जब खुदा एक शख्स को किसी खास खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शख्स खुदा पर इख्तियार रखता है। ये आपका ईमान है जो खुदा पर होता है। और वो लोग वहाँ छोटी पहियों वाली गाड़ी ले आए जो कि बिल्कुल बच्चों की पहियों वाली गाड़ी की तरह होती है, और एक तख्ता लिया और लोगों को उसके ऊपर बिठाया और उन्हें अंदर ले गए। और इबादत खत्म हो जाने के बाद इंतजामिया के लोग गाड़ियों के हमरा वहाँ गए और पुरानी रेड़ियाँ और पुरानी कुर्सियाँ और डंडे और चारपाइयाँ और बिस्तर उठा लिए और तमाम रास्ते को साफ कर दिया, क्योंकि जैसे ही बीमार लोग जरा चलकर दूर गए तो उन चीजों को वहीं छोड़ गए, क्योंकि उस जगह पर खुदावंद की हजूरी मौजूद थी। यही है जो हम देखना चाहते हैं। इसलिए ये इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि ये खुदा है जो जुम्बश करता है। वापिस आते हैं ताकि अब आज सुबह जरा मदद पा सके, इसलिए मैं कुछ देर में कलाम पेश करूंगा। और मैंने लड़कों से कहा था कि टेप अभी ना दें। 3 दिन तक मैंने बड़े जोर से सोचने की कोशिश की कि मैं किस पर कलाम सुनाऊं, और आज सुबह इससे पहले कि मैं इस जगह से निकलता तो मैंने अपने दिल में कलीसिया के लिए एक हकीकी सख्त खबरगिरी को महसूस किया, और मैंने उन्हें बताया टेप लें मगर उन्हें फरोख्त ना करें। इससे पहले कि हम कलाम करें, मैं पसंद करूंगा कि आपको एक छोटी सी गवाही दूं जो कि आपकी बेहतरी के लिए होगी। इससे मेरा भी भला हुआ था। हम 3 दिन के लिए मछली का शिकार करने के लिए गए, लियो, जीन और मैं खुद, और मेरा बेटा बिली पॉल और उसकी बीवी जॉर्जिया से टेबरनेकल में आए हुए एक दोस्त के साथ थे। और वो लोग हमें पीछे कुछ दलदली जगह पर ले गए। मैं नहीं जानता अब वो किस जगह पर है, शायद अकोचोबी के नजदीक या पीछे दूर इसी तरह की जगह थी, मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन उन अमरीकी रेड इंडियन ने उसे ये नाम दिया था। लेकिन जो भी हो, हम कई मील पीछे चले गए, और भाई एवंस का एक भाई गुनहगार है और वो एक माहिर माहीगीर है, और वो कुछ महीने पहले पहाड़ी नाले वाली दलदली जगह गया था, और वो लोग उसे सांपों वाली जमीन कहते हैं, और उस जमीन के सांप ने उसे काट लिया था और वो मुश्किल से ही जिंदा बचा था। उसके बदन का हिस्सा सूज गया था और वो लोग उसे डॉक्टरों के पास ले गए और उन्होंने उसे इंजेक्शन लगाए। वो चीजें मौलिक हैं। और इसी तरह वहाँ पहाड़ी नाले में उनके यहाँ बेशुमार सांप और पानी के सांप और बहुत जहरीले सांप और बड़े मगरमच्छ मौजूद हैं, जो कि 20 फुट तक लंबे होते हैं। और जब हम वहाँ उस नाले पर मछलियाँ पकड़ रहे थे तो मैंने एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ा। हो, ये वाकई ही एक पुरसकून सा दिन था। वो बहुत बड़ी थी, हत्ता कि मैं उसे पानी से खींच ना पाया और उसने कांटे को सीधा किया और आगे को खिसक गई या खुद को खींचकर आजाद कर लिया। और हमने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और उन बड़ी मछलियों का वजन तकरीबन 150 पाउंड था और उनमें से कुछ का वजन मुख्तलिफ पाउंड था, जैसा कि 4 से 7 या 8 पाउंड तक था। और मैंने उस बड़ी को पकड़ा था लेकिन वो आजाद हो गई थी। और मैंने कांटा दोबारा फेंका और मैंने एक और पकड़ ली जो 6 या 7 पाउंड के लगभग थी। और मेरे पास एक लंबा डंडा था जिससे आप तालाब से कंवल के फूल को ऊपर खींच सकते हैं। और भाई एवंस के पास भी था और हम सब पानी के जोर की वजह से भीग गए थे और वो बिल्कुल दलदल की तरह था। और उसने अपने जूते उतार दिए और उसने अपनी पतलून को अपनी टांगों तक ऊपर कर लिया और थोड़ी सी खुश जमीन पर बैठ गया और अपने कपड़ों को खुश कर रहा था। और उसने झाड़ियों के गिर्द उस बड़ी मछली को कीचड़ में पलटियां लगाते देखा और मैं उसकी तरफ जाने लगा। उसने कहा, भाई ब्रहनम, सिर्फ एक मिनट, मैं इसे आपके लिए पकड़ूंगा। और वो उस तरफ भाग गया और मैंने उसे ऊपर खींचा और अंदाजा है कि मछली तकरीबन इस जगह में पड़े हुए मर गई थी। और वो उस तरफ दौड़ा कि उसे पकड़कर ऊपर निकाल ले और जब उसने ऐसा किया तो उसकी चीख निकल गई और वो यहाँ वापिस आ गया। एक सांप ने उसे काट लिया था। और हमने उस पर निगाह डाली तो जहाँ सांप ने उसके पाँव पर काटा था वहाँ उसके जहरीले दांतों के सुराख बन गए थे और ये उसे बहुत बुरी तरह तकलीफ पहुँचा रहे थे, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इस तरह महसूस हो रहा है जैसे उसकी हड्डियों में फालिज हो रहा है। और जिस जगह पर हम थे कई मील दूर तक पीछे दलदल ही थी। वो बड़े वजूद का आदमी था जिसे उठाना पड़ा था। और जब आपको एक सांप काट लेता है तो आप कुछ ही मिनटों में बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि आप तकरीबन मरने के करीब पहुँच जाते हैं। और लियो वहाँ मौजूद था और एक बात मेरे जहन में आई कि तू अब भी वही खुदा है। और जब वो अपने पाँव को थामे और उसे पकड़े हुए था और उन दो बड़े जहरीले दांतों के सुराखों पर जहाँ सांप ने उसको डस लिया था, मैंने उस जगह पर अपने हाथ रख दिए और कहा, खुदावंद, ये तेरे कलाम में लिखा है कि वो सांपों और बिच्छुओं को कुचलेंगे और उन्हें किसी चीज से कोई जरर ना पहुँचेगा। और ठीक उसी लम्हे सारी दर्द उसके पाँव से खत्म हो गई। उसने अपने जूतों को पहना और सारा दिन मछलियाँ पकड़ता रहा। जब उस रात वापस पहुँचे और उन लोगों को उसके मुतालिक बताया तो उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाओ। उसने कहा, अगर खुदा ने इस फासले तक मेरी हिफाजत की है तो वो मेरी बाकी सारे रास्ते में भी हिफाजत करेगा। हमने 3 दिन तक मछलियाँ पकड़ी और उस दौरान इस पर किसी भी बीमारी का असर न आया। खुदा अब भी वही खुदा है, वो हर वादे को पूरा करता है। और अपनी पूरी खिदमत के दौरान ये पहला मौका था कि मैंने देखा कि खुदा एक सांप के काटने पर भी मौजूद हुआ, क्योंकि यही पहला ऐसा वक्त था जब मुझे किसी ऐसे शख्स के लिए दुआ करने का मौका मिला जिसको सांप काट चुका था। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि वो अपने तमाम वादों को पूरा करता है और उसका कलाम भला और सच्चा है। आमीन। आज रात की इबादत और इस आने वाले बुध की इबादत को याद रखें और किसी के लिए दुआ करनी है जिसको अब यकीनन दुआ की जरूरत है और वो मैं हूँ। और याद रखें, भाई रॉबर्ट्स की इबादत में शिरकत करें और जब वो शहर में आए तो उनको टेबरनेकल की जानिब से सलाम कहें। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो मैं पसंद करूँगा कि हम अपने कदमों पर एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं। और बगैर म्यूजिक के आए जरा कलीसिया के पुराने गीतों में से ये अजीम एक या दो कोर्स गाएं, मेरा ईमान तुझ पर है। ठीक है, हर एक अब मेरे साथ शामिल हो और आए इसे गाते हैं। और ऐसा ख्याल मत करें कि आप कैसे गा रहे हैं, सिर्फ इसे खुदा के जलाल के लिए गाएं। भाई नेवल, क्या आप इसे शुरू करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे? मेरा ईमान तुझ ही पर लगा है, तू जो बड़ा कलवरी का है, اور الہی نجات دہندہ ہے۔ جبکہ میں دعا کرتا ہوں تو اب میری سن، میرے تمام گناہوں کو دور کر دے۔ اور مجھے اسی دن سے پورے طور پر اپنا ہونے دے۔ جب میں زندگی کے تاریخ آڑے ترچھے راستوں پر چلتا ہوں اور دکھ تکلیف میرے چوگرد پھیلتے ہیں، تو ہی میرا رہنما ہے، جب تاریکی دن میں ڈل رہی ہو، دکھ اور مصیبت صاف اور خوف دور ہو رہے ہو، تو مجھے کبھی بھی اپنی طرف سے بھٹکنے نہ دینا۔ اپنے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ میں بائبل کی پاک تحریر میں سے مقدس متی 7 باب کی 13 اور 14 آیت کو پڑھنا پسند کروں گا، اور جیسے ہی ہم اسے پڑھتے ہیں تو خداوند اپنی برکت کثرت سے نازل کرے۔ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اسے داخل ہونے والے بہت ہیں۔
Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life.
کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔
او God who brought again the Lord Jesus from the death,
اے خدا تو جس نے خداوند یسوع کو دوبارہ موت اور قبر سے نکالا اور ایک زندہ قربانی کی طرح آج صبح اسے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم فروتنی سے اپنی زندگیوں کو نئے طور سے تیرے لیے مخصوص کرتے ہیں ان خیالوں پر جن سے تو ہمیں آگاہ کرے گا۔
While we were yet sinners, dead in sin and trespasses, you sent your only begotten Son.
جبکہ ہم گناہگار ہی تھے اور اپنے ہی گناہوں میں مردہ تھے، تو تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ گناہ آلودہ جسم کی صورت میں ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ جو کہ بے گناہ تھا وہ گناہگاروں کے لیے دکھ اٹھائے تاکہ ہماری دوبارہ تیرے ساتھ رفاقت کرا دے۔
God, if there is sin in our midst this morning, something that might
اور اے خدا اگر آج صبح ہمارے درمیان گناہ ہے اور کوئی چیز ہماری طرف سے خدا کے پیغام کو ہم میں سے ہر ایک کے دل میں رول کچھ کو روک رہی ہے، تو خداون ہم فروتنی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے قصوروں کو معاف کر دے اور ہمیں خداون یسوع کے لہو سے پاک کر دے، اور جیسے کہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن تو پاک ہے، تو صادق ہے، تو ہی راستباز ہے، تو ہی رحم کا سر چشمہ ہے، اور ہم عاجزی سے آج اس طرف ترستی روحوں کی طرح بڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہ گواہی کے ساتھ جو کہ بیان کی گئی ہے، جو کہ جمیکا اور پورٹو ریکو میں واقع ہوئی، اور جہاں تو نے بڑے ہی عظیم کام سر انجام دیے، اے خدا یہ اس راست باز کی آمد کی نشانی ہے۔ کیسے تو نے بھائی ایونز کو سانپ کے زہریلے دانتوں کے زہر سے رہائی بخشی، کیونکہ وہ ایک ایماندار ہے اور تیرا کلام ہمیشہ سچا ہے۔ اب اے خداوند جیسا کہ دشمن نے ہمیں کاٹا اور زہر آلودہ کر دیا، तू हमें आज सुबह मौत के जहरीले दांतों से रहाई बख्श।
Let thy healing balm this morning, Lord,
खुदावंद आज सुबह अपनी शिफाया मरहम लगने दे, हमारी रूहों को सराब कर दे और हमें तमाम नाराजगी से पाक कर दे, और तमाम जिस्मानी बदनों को बीमारियों से शिफा दे जो दुश्मन की ताकत से टूट गए हैं, ताकि इस इलाही हजूरी में शिफा पा सकें। खुदावंद अपने लिखे गए कलाम के वसीले से हमसे बोल, हम नहीं जानते क्या कहना है लेकिन तू मुहैया करेगा। खुदावंद तूने हमें आगाह किया है और हमें अपनी आमद के लिए तैयार कर, हम ये यीशु के नाम से और उसी की खातिर मांग लेते हैं, आमीन। क्योंकि मैंने अब इंतजार किया है और मैं हमेशा थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, और मेरा ख्याल है कि संडे स्कूल खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ इसके मुतालिक कोई बात है। जब मैं घर आया तो मैंने इस तरह महसूस किया कि मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त है। आप जानते हैं कि हम किसी भी तरह बहुत तेज रफ्तारी में हैं, बस हमें सिर्फ खुदा पर ईमान रखना चाहिए। हमारे खुदावन ने इस सख्त खबरगिरी को अपनी नस्ल के लोगों को दिया था, उन लोगों को जो कि बहुत ही मजबूत थे। और उसने कहा था, क्योंकि दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। अब ऐसा नहीं था कि वो लोग मजबूत नहीं थे, वो बहुत मजबूत थे।
And because that they had trusted in the church and in certain creeds and
वो अपने चर्च और खास अकीदों और तंजीमों पर एतकाद रखते थे और किसी हद तक खुदा पर भी भरोसा रखते थे। उनकी सोच थी कि हर एक चीज दुरुस्त है, लेकिन वो उन्हें बता रहा था कि वो थोड़े हैं जो अंदर दाखिल होंगे। और मैं आज सुबह हैरान हो रहा हूँ, अगरचे मैं इस नस्ल का उस नस्ल से मुवाजना नहीं कर सकता। देखें, ये यहूदियों के निजाम का इख्तिताम हो रहा था और वो पिछली कई मुख्तलिफ बातों का और मुख्तलिफ निजामों के मुख्तलिफ इख्तिताम का हवाला दे रहा था। और उन्हें बता रहा था कि बिल्कुल यही बात उन साबक निजामकारों ने भी की थी जो तुमसे पहले थे, और वो उस बात को पहचानने में नाकाम हो गए थे। आए उनमें से कुछ बातों के मुतालिक देखते हैं जिनके मुतालिक वो बता रहा था। मिसाल के तौर पर वो लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पाए थे कि उस शख्स के अंदर खुदा था, और ये सबसे बड़ी रुकावट थी जिस पर उन्हें काबू पाना था कि कैसे वो इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। वो लोग इस बात को समझ ना पाए कि कैसे खुदा इंसानी जिस्म में सकूनत पजीर हो सकता है, और तमाम वक्तों और तमाम जमानों में खुदा हमेशा इंसान के अंदर ही सुकूनत पजीर रहा है। इंसान खुदा का कारिंदा है, हर एक नस्ल में खुदा अपने लोगों से इंसानी लबों से हम कलाम होता रहा है। उसने हमेशा किसी शख्स या किसी चीज का इंतखाब किया है जिसे वो इस्तेमाल करता है। उसने उन लोगों को इब्राहिम के बारे में एक ऐसी हैरान करने वाली बात का हवाला दिया। उसने उनको बताया, अगर तुम अपने आप को इब्राहिम की औलाद कहते हो कि इब्राहिम हमारा बाप है, तो उसने मेरा दिन देखा और वो खुश हुआ। इब्राहिम एक नबी था, और इसमें जरा भी शक नहीं कि यीशु उन लोगों को हवाला दे रहा था और उसने उनको सबूत दिया कि वही मसीह है, क्योंकि मसीहाना निशान उसकी पैरवी कर रहा था और मसीह का निशान हर नस्ल के जरिए इसी तरीके से जाहिर होता रहा है। लेकिन अब वो खुद को खुदा बना रहा था और खुद को मसीहा बना रहा था। इस बात से उनको ठोकर लगी, वो लोग इसे समझ ना सके। अब जब इब्राहिम, जिसे वो अपना बाप कहते थे, खुदा से मिला तो वो बदन में था, क्योंकि उसने इब्राहिम की मौजूदगी में बछड़े का गोश्त खाया, उसने मकई की रोटी और मक्खन खाया और दूध पिया, लेकिन तो भी वो खुदा था। इब्राहिम उसे पहचान गया कि खुदा है और उसे एलोहिम पुकारा, जो कि कादरे मुतलिक यहोवा है। एक इंसान के कपड़े पहने हुए, मिट्टी उसके बदन पर पड़ी थी और साय के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया और खाना खाया और दूध पिया। लेकिन वो सर्द, सख्त दिल और खुद गर्ज और रास्त यहूदी उस पर खुदा का बेटा होने का यकीन न कर पाए और इब्राहिम को अपना बाप कहते थे, और वो उन्हें करके दिखा रहा था कि जाने कि वो जिस्म में वही काम कर रहा है जो खुदा ने एक दूसरे जिस्म में किया था, जब वो उनके बाप इब्राहिम के पास गया था और इब्राहिम ने उसका यकीन किया, लेकिन वो उसका यकीन ना कर पाए। आप देखें, जब इब्राहिम अपने खेमे के नीचे बैठा हुआ था तो उसने एक इंतखाब किया, और यही इंतखाब हर एक शख्स के सामने जो इस दुनिया में पैदा होता है रखा जाता है। नेको बद का दरख्त हर शख्स के सामने रखा गया है। और जब लूत, जो कि उसका भतीजा था, जब उनके चरवाहों ने जमीन के मामले में लड़ना शुरू किया, तो इब्राहिम ने एक आदिल इंसान होते हुए उनसे कहा, हम में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तू अपनी राह जाने के लिए अपना इंतखाब कर ले। और यही मकाम हर एक ईमानदार की जिंदगी में आता है, और आज सुबह ये आपके सामने है और यही मेरे सामने है। लूत ने नहीं सोचा था कि गुमराह होने जा रहा है, लेकिन वो सदूम को देखते हुए वहाँ चला गया जहाँ चीजें आरामदेह थी। और ज्यादातर हम आगे बढ़ने के लिए आसान रास्ते को तलाश करते हैं। मैं फला कलीसिया में शामिल हो जाऊंगा, और आप देखें, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि शहर में ये सबसे बड़ी कलीसिया है। आसान तरीका, कई मरतबा हम ऐसा करते हैं जबकि हम गलत होते हैं। याद रखें, अगर आप मसीह की पैरवी करेंगे तो लोगों की जानिब से आपसे नफरत की जाएगी, क्योंकि वो सब जो मसीह यीशु में दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं सताए जाएंगे। अगर आप मसीह के पास आते हैं तो फिर आप किसी कलीसिया या किसी तंजीम या किसी अकीदे की तरफ से नहीं आते, तो आप सिर्फ खून के वसीले आते हैं, क्योंकि यही वाहिद रास्ता है। और ना ही आप अपने साथ किसी और को ला सकते हैं, आप अकेले ही आते हैं और आप अपने इकरार और ईमान पर खड़े हो जाते हैं। आप पास्टर पर सवार होकर या अपनी माँ के ईमान पर सवार होकर नहीं आ सकते। जब आप खुदा के पास आते हैं तो आप अकेले ही आते हैं, और ज्यादातर हम उन बेवकूफ चीजों का इंतखाब कर लेते हैं। क्या हुआ जब लूत ने उन सारी आरामदेह चीजों को देखा? उसने देखा कि वहाँ बड़ी धन दौलत और शोहरत है, क्योंकि वो एक अजनबी था और एक जहीन और नफसियात में भी तलीम याफ्ता था। शायद वो कुछ मखसूस काम करके अपने मजहब को बरकरार रख सके। उसने सोचा, मेरा ईमान खुदा पर है, इसलिए अब मैं सदूम में जाऊंगा और मैं कुछ ज्यादा दौलत हासिल कर लूंगा और मैं एक बड़ा आदमी और एक जबरदस्त मनात बन जाऊंगा। गौर करें, आपको एक चीज का इंतखाब करना पड़ता है। आम लोगों को भी एक चीज का इंतखाब करना पड़ता है। मैं वहाँ उस फलां कलीसिया में जाऊंगा। हो, शहर में हर एक ये सोचता है कि ये सबसे बढ़कर है। क्यों? इसलिए कि शहर का नाजम इसी कलीसिया से ताल्लुक रखता है। अब अगरचे वो एक कलीसिया से ताल्लुक रखता है जो कि अच्छा है, लेकिन क्या अब आपने कलामे मुकद्दस के मुताबिक उस कलीसिया और उसके लोगों का अंदाजा लगाया है? बाज औकात लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि ये एक हर दिल अजीज रास्ता है कि लोग अच्छे लबास पहनते और फलां जगहों पर जाते हैं और इसी मकाम पर हम एक तबाहकुन गलती कर लेते हैं। अब इस पर गौर करें, और इब्राहिम के पास सिर्फ एक ही चीज थी जो वो कर सकता था, दूसरा इंतखाब। और बाज़ औक़ात दूसरा इंतखाब पहले की निस्बत बेहतर होता है अगर इसे इस तरह लिया हो। गौर करें, तवील अरसा नहीं हुआ था जब लूत ने उस बड़े शहर को देखा। उसने अपनी बीवी को नमक का स्तून बनते हुए नहीं देखा था। उसने शहर पर आग बरसते नहीं देखी थी। लेकिन इब्राहिम ने खुदावन के कुछ अदना से रास्ते का इंतखाब किया। उसने बियाबान में क्याम किया। और फिर क्या होता अगर सारा ने कहा होता? अब याद रखें, सारा उस पूरे मुल्क में सबसे खूबसूरत तरीन औरत थी। वहाँ कोई भी औरत सारा जैसी खूबसूरत नहीं थी। हर एक उसे देखता और उसकी मोहब्बत में फरिफ्ता हो जाता था। अब इस किस्म का इंतखाब करने के लिए सारा के लिए कितना ही आसान रास्ता था, लेकिन उसने इब्राहिम के साथ क्याम करने का इंतखाब किया। हो ऐ औरतों, शोहरत और इस उसमें शामिल होने के लिए शैतान आपको अंधा करने ना पाए। आप मसीह के साथ क्याम करें। क्योंकि वक्त करीब है और इस मुल्क के लिए सदूम और अमूरा से भी बढ़कर ज्यादा बड़ी तबाही आगे पड़ी है। सदूम और अमूरा इससे भी बेहतर होंगे। अब जब इब्राहिम ने खुदा के दिए गए रास्ते का इंतखाब किया तो वो जमीन का उजाड़ हिस्सा था। वो किसी तरह से खुशहाल नहीं था, लेकिन तो भी वो एक बात को जानता था कि उसने खुदा की खिदमत की है और उसने खुदा पर ईमान रखा है। बस एक दिन वहाँ तीन आदमी आए और वो गिर्द आलूदा और थके हुए थे, और इब्राहिम ने उनके लिए हमदर्दी महसूस की। उसने कहा, इस तरफ आइए और थोड़ी देर के लिए इस बलूत के दरख्त के नीचे बैठ जाइए। और जिस दौरान वो वहाँ खड़ा उनसे बातचीत कर रहा था तो वो पहचान गया कि वो कोई मामूली इंसान नहीं। उनकी बातों से लगता था कि वो बड़े मुख्तलिफ हैं। और इब्राहिम गया और एक बछड़े को ज़बह किया और उसे तैयार किया, और सारा ने रोटियां तैयार की और उन्हें खाने को दिया गया। अब याद रखें, उनमें से दो फरिश्ते थे। फरिश्ते इंसानी बदन में थे और उनमें से एक खुदा खुद था, और जो खुदा था उसकी पुश्त खेमे की तरफ थी और सारा खेमे में मौजूद थी। मैं इस तरह की औरत को देखना पसंद करता हूँ जो इस तरह अपने मकाम पर कायम रहे, ना कि हर मर्तबा जब कोई बाहर आए तो बाहर आ जाए और अपने शोर को बताए कि क्या करना है। लेकिन वो खेमे में मौजूद थी। कोई शक नहीं कि शायद वो बर्तन धो रही हो या कोई और काम कर रही हो। और जो खुदा था वो आगे सदूम की जानिब निगाह लगाए हुए था, और उसने उन्हें बताया कि वो क्या करने जा रहा है। और दो फरिश्ते वहाँ खुशखबरी का प्रचार करने के लिए गए, लेकिन एक पीछे ही ठहरा रहा और वो खुदा था। और उसने कहा, मैं इब्राहिम से कुछ भी पोशीदा ना रखूंगा जो कि मैं करने को हूँ, क्योंकि वो दुनिया का वारस होने जा रहा है। हो कलीसिया, आज सुबह हमने उस बख्शिश को हासिल किया है कि खुदावंत की पोशीदा आमद को जाने, क्योंकि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो दिल के पाक हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। پھر اگر زندہ خدا کی کلیسیا کو زمین کا وارث ہونا ہے تو پھر اسے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے. یسوع نے کہا وہ سب جو باپ نے مجھے بتایا ہے میں تم کو بتاتا ہوں, لیکن انہوں نے اس کا یقین نہ کیا. پس ابراہیم کے دنوں کے تعلق سے وہ انہیں حوالہ دے رہا تھا. اس نے کہا جیسے ابراہیم فرشتے سے گفتگو کر رہا تھا اور اس کی پشت خیمے کی جانب تھی, اور اس نے ابراہیم کو بتایا کہ وہ اسے ایک بچے سے نوازنے کو ہے, اور سارا خیمے کے اندر ہنس پڑی. اور اس نے کہا سارا کیوں ہنسی؟ وہ کیا ظاہر کر رہا تھا؟ سارا کیوں ہنسی؟ جب یہ واقعہ ہوا تو یہ تباہی سے تھوڑا عرصہ پہلے ہوا تھا. ذرا سا تباہی سے پہلے آسمان سے وہ آگ نازل ہوئی اور شہر کو بسم کر دیا, اور وہ نشان رونما ہوا. اور یسوع نے کہا تم گمراہ ہو ان سے جو علم الہیات کے عظیم ڈاکٹر تھے, اور ایک مذہبی قوم سے جہاں واقعی لاکھوں ایماندار تھے. اس نے کہا تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو. بالکل ایک اس طرح کی نسل کو جو کہ بہترین تربیت یافتہ انسان تھے, جو کہ عالم اور عالی شان کلیسیا تھے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ کلیسیا کی ملکیت ہوتا تھا. آپ کو ایک اسرائیلی ہی ہونا پڑتا تھا, اور ان کی پیدائش کے بعد آٹھویں دن ان کا ختنہ کیا جاتا تھا, اور وہ پیدائش ہی سے اسرائیلی ہوتے تھے. اور کہانت لاویوں سے آئی تھی جنہیں سینکڑوں سال کلام مقدس سے تربیت دی جاتی تھی. پھر بھی یسوع نے کہا تم گمراہ ہو اس لیے کہ کتاب مقدس کو نہیں سمجھتے. وہ کتاب مقدس کو صرف اپنی تعلیمی اور علمی کتاب کے طور پر جانتے تھے, لیکن یسوع نے کہا تم کتاب مقدس کو نہیں جانتے اور نہ ہی تم خدا کی قدرت کو جانتے ہو. اگر تم نے ابراہیم کو جانا ہوتا تو پھر تم مجھے بھی جانتے. اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو تم مجھے بھی جانتے, کیونکہ جب ابراہیم نے میرا دن دیکھا تو وہ خوش ہوا, کیونکہ اس نے پہلے ہی وہ دن دیکھ لیا تھا. جب میں وہاں پیچھے اس کے سامنے ایک انسانی بدن میں موجود تھا اور اسے انجام دیا تھا تو وہ جانتا تھا کہ میں وہی ہوں, اور اس نے مجھے ایلوہیم پکارا. لیکن یہاں میں نے بالکل وہی کام تمہارے سامنے کیے ہیں اور تم مجھے بالزبول کہتے ہو. انہوں نے کہا ہم اپنے باپ ابراہیم سے ہیں, ابراہیم کو اپنا باپ کہتے ہیں. اس نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہم کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں, ہم ایک مذہبی قوم ہیں, ہم ایک عظیم قوم ہیں, اس لیے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. یسوع نے کہا تم شیطان سے ہو اور وہ تمہارا باپ ہے. کیا میں اس نسل کا اس نسل سے موازنہ کروں؟ آج جبکہ یہاں واقعی لاکھوں لوگ موجود ہیں جو مسیحت کا اقرار کرتے ہیں اور خدا کے متعلق ایک ویشی سے زیادہ نہیں جانتے جتنا کہ وہ شب مصر کے بارے میں سمجھ رکھتا ہے, اور آج یہاں واقعی لاکھوں مرد اور عورتیں مسیح ہونے کا اقرار کرتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسیح ہیں, اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے پہلے اصول کو بھی نہیں جانتے, اور نہ ہی کبھی اس کی بلائی کا ذائقہ چکھا ہے. انہوں نے کبھی بھی اس کی قدرت کو محسوس نہیں کیا. سچائی کی جانب سے ان کی آنکھیں اندھی ہیں. تم اندھوں کے اندھے رہنما ہو کیا نہیں؟ اگر اندھا اندھے کی رہنمائی کرے گا تو کیا وہ سب گڑے میں نہ گریں گے؟ تب انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم مسیحی ہیں, ہم ایماندار ہیں, ہم موجودہ وقت کی اعلیٰ ترین کلیسیوں سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے ربی بہترین تربیت یافتہ عالم ہیں جتنے کہ وہ ہو سکتے ہیں. اور پھر بھی یسوع نے ان سے کہا کہ وہ کتاب مقدس کو نہیں جانتے. دیکھیں کیسے خدا نے اسے عقل مندوں اور داناؤں سے چھپایا اور اس طرح اسے بچوں پر ظاہر کر دیا. ہو خدا کی عظیم قدرت اور لامحدودیت, وہ ان کے ساتھ کیسا بلا ہے جو اس کے سامنے راست بازی سے چلنے کی آرزو رکھتے ہیں. وہ ان سے کسی اچھی چیز کو باز نہ رکھے گا. اور اس دن پر غور کریں جب ہماری قوم, ہماری دنیا بالکل یکساں چیز سے برباد ہو جائے گی. یسوع نے براہ راست ان کی اصلاح کی. उन्होंने कहा, ओ इब्राहिम हमारा बाप है और हम जलाल में होंगे, तुझे इस बात के मुतालिक फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुदा पर ईमान रखते हैं। हम प्रोफेसर हैं और हम खुदा पर ईमान रखते हैं और यही हम अपने लोगों को सिखाते हैं। और तू कौन है जो यहाँ एक बेद और छोटे से निशान के साथ आ मौजूद हुआ है और कहने की कोशिश कर रहा है कि ये खुदा है? तू तो बालज़बुल के अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ आप हैं। उनके पास उनके अकीदे और उनकी तंजीम थी। यस्सु ने उन्हें कहा कि तुम शैतान से हो, जरा इसके बारे में सोचें। और मैं उस नस्ल का इस नस्ल से मुवाजना करूंगा। आज जबकि हमारे पास हजारों हजार और लाखों लोग कलीसिया में शामिल हो रहे हैं और खुदा दोबारा अपनी कलीसिया में रहने के लिए नीचे उतर आया है और बिल्कुल वही काम कर रहा है जो उसने वहाँ किए थे, ताकि खुद को कल और आज बल्कि अब तक यकसा साबित करे। मगर लोग मतवातर उससे मुंह मोड़ रहे हैं, कुछ शोहरत पाने के लिए और कुछ इंतखाब ना करने की वजह से। ये लोगों की मजबूरी है, आपको इंतखाब करना पड़ता है। आप खामोश खड़े नहीं रह सकते, आपको हाँ या नहीं कहना पड़ता है। आप उस दरवाजे को कभी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल वही इंसान जिसके वसीले आप अंदर आए हैं, आप उसे नहीं छोड़ सकते। आपको इंतखाब करना है, आज सुबह मसीह का इंतखाब कर ले। उन्होंने सोचा हर एक चीज जो कलीसिया के साथ ताल्लुक रखती है बचाई जाएगी। यीशु ने कहा वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। मुझे आज सुबह आपको खबरदार करने दीजिए, ऐ कलीसिया मोहतात हो जा। आज ये रास्तबाजी का दिखावा करने वाली खुद मुख्तार रेयाकार नस्ल जमाने को लेती है जिसमें हम रह रहे हैं। एक ऐसी घड़ी में जब मर्द और ख्वातीन कलीसियों में और बेंचों पर खड़े होते हैं और खुदा के तराने गाते हैं, और जब चर्च से बाहर निकलते हैं तो सिगरेट पीते हैं, विस्की पीते हैं और नाचने को जाते हैं और दुनिया के लिए जीते हैं और गंदी बातें बताते और गंदे मजाक करते हैं और फिर भी अपने आप को मसीही कहते हैं। जब मर्द और ख्वातीन प्लेटफॉर्म की जानिब या चर्च की जानिब चलते हैं और उसके जी उठने वाली कुदरत के मुकाम से, जहां बिल्कुल वही मसीहाना निशान उनके दरमियान जुम्बश करता है और फिर भी वो मसीह में नए मखलूक नहीं बनते, तो फिर वहां कुछ गड़बड़ है। जब ये खबरें आग लगा सकती हैं और साहिल से साहिल तक, आगे और पीछे, शमाल के मुंजमद खित्तों से जनूब के गर्म जंगलों तक खुदा इसे भेजता है और लोग मुतवातर इससे पुष्ट फेरे रखते हैं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं? हमें वापस किताब मुकद्दस की तरफ मुड़ना है जहां उसने कहा वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। उसने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ, इब्ने आदम के आने के वक्त भी वैसा ही होगा। सुने, नूह के दिनों में दुनिया तकरीबन इसी तरह आबाद थी जिस तरह के आज है। उनकी साइंस हमारे से ज्यादा बुलंद थी। उन्होंने मिस्र के असारे कदीमा और अहरामे मिस्र तामीर किए और कई काम किए जो कि आज हम नहीं कर सकते। वो बेहद अजीम और जहीन लोग थे।
Science says today it's 1 minute before midnight.
और याद रखें, साइंस आज कहती है अभी तो आगाज ही हुआ है, ये तो स्कूल से पहले की एक घड़ी है, लेकिन जो हम सोचते हैं उससे बहुत देर हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ईमान आज रूल कुछ हर एक ईमानदार के दिल में गहरे तौर पर दाखिल करेगा जैसा नूह के दिनों में था। नूह के दिनों में कितने उस नस्ल में से बचे? आठ, कई मिलियन में से सिर्फ आठ। उसने कहा इब्ने आदम के आने के वक्त भी ऐसा ही होगा। और जैसा सदूम के दिनों में था, इब्ने आदम के आने के वक्त भी ऐसा ही होगा। वहाँ हजारों हजार लोग मौजूद थे लेकिन सिर्फ तीन बचे। तो फिर आप मुझसे कहेंगे खादम साहब, तो फिर उन तमाम के मुतालिक क्या ख्याल है जो हजारों उसके साथ आएंगे? अब भाई वो बहुत सारी नस्लों का मजमुआ है। मैं हैरान होऊंगा अगर इस नस्ल में से दर्जन भर भी निकल आए, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। हो, मैं कलीसियाओं को जानता हूँ, वो क्या कहते हैं। अगर आप अपना नाम किताब में लिखवा लें और आप एक मेंबर बन जाएं, तो फिर आप ठीक हैं। इस तरह का कोई भी हवाला मौजूद नहीं है। अगर हर एक चीज ने अपना नाम किताब में और कलीसिया में लिखवा लिया, तो फिर वहाँ अरबों मरतबा अरबों मरतबा अरबों होंगे और हर एक आसमान पर चला जाएगा। फिर तमाम इकसाम की अरवा वहाँ होंगी और आसमान किस किस्म की हालत में होगा, अब इसके बारे में सोचें। कोई मुझसे कहता है, भाई ब्रहनम, अब एक मिनट इंतजार करें, फलां और फलां को मैंने सुना है, वो गैर जुबानों में बोलते हैं, मैं जानता हूँ वो ये करेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि वो ये सब कुछ हासिल कर लेंगे। पालूस ने पहला करंथियों 13 में कहा, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और मैं फलां और फलां मीटिंग में गया, ओ उसने अजीम और कुदरत वाले काम किए, मैंने देखा कि उसने अंधे को देखने के काबिल बना दिया, फिर भी वो बरगश्ता हो सकता है। उस रोज बतेरे आएंगे और मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या मैंने तेरे नाम से नबुवत नहीं की? क्या मैंने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला? क्या मैंने तेरे नाम से बहुत से मौजजे नहीं किए? वो कहेगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। मुझे आपको कुछ एदाद और शुमार देने दीजिए जो आपको हिला कर रख देंगे।
अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस एंड द सिटी ऑफ शिकागो,
मेडिकल साइंस के मुताबिक शिकागो शहर में डॉक्टरों के एदाद और शुमार के मुताबिक सिर्फ शिकागो शहर में 30 दिनों में 30,000 अस्काते हमल के केस हुए जो कि डॉक्टरों के पास मौजूद है। एस्काते हमल के केस के लिए वो लोग कितनी छोटी गोलियां और ऐसी ही चीजें इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में एदाद और शुमार जाहिर करते हैं कि मुकद्दस शादी के बंधन से पैदा होने वाले बच्चों की निस्बत नाजायज औलाद ज्यादा है। और क्या आप जानते हैं कि बाइबल ने शायद अस्तिश्ना के 14वें बाब की दूसरी आयत में कहा था कि एक हराम ज्यादा 400 साल तक इस जमात से बाहर रहे। उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे खुदावंद की जमात में खड़े नहीं हो सकते। 400 साल यानी 10 नस्लों तक एक नस्ल 40 साल की है। उनका बड़ा 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 दादा एक हरामजादा था। ये तस्वीर से बाहर है। अब क्या है, मुझे दिखाएं, ये कहाँ तब्दील हुआ? हम किस लिए यहाँ आए हैं? और जनाकारी से हरामजादे पैदा होते हैं और गुनाहगार औरतें गलियों में मर्दों की तरह लिबास पहने हुए हैं, जो कि खुदा की नजर में मकरू बात है। सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले खुद को मसीह कहते हैं, खुदा कस्बियों के ग्रोह को गैर शरी कहता है, ये दुरुस्त है, और फिर भी अपने आप को मसीह कहते हैं। कोई हैरत नहीं कि यीशु ने कहा, वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। वो खुद को फरोतन नहीं करेंगे, वो सख्त हैं। देखें, जब दाऊद को उसके गुनाह के मुतल्लक बताया गया जो उसने किया था, तो फौरन उसने तौबा की और इस बात के लिए खुदा ने उससे मोहब्बत की। और आप उन्हें उनके गुनाहों के मुतल्लक बताएं, वो कहेंगे, मैं दोबारा दरवाजे पर अपना साया भी नहीं पड़ने दूंगा। क्यों? इसलिए कि उनके पास जाने के लिए बेशुमार मकामात हैं। वो उन नजायज मकामात पर जा सकते हैं जो कि इस तरह के लोगों के साथ बड़े पड़े हैं। लेकिन ये वक्त है कि खुदा के खादम सारे हथियार बांध लें और बगैर किसी समझौते के कलाम यानी खुशखबरी की मुनादी करें। लोगों को चाहिए खुद को फरोतन बनाएं। मसीहों के अंदर मजीद कोई दयानतदारी नहीं रही। वो कहना चाहते हैं कि मैं एक मेथोडिस्ट हूँ, मैं एक बैप्टिस्ट हूँ, मैं एक पेंटिकोस्टल हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि वो खुदा के हैं। मैं गैर जुबानों में बोला, मैंने मौजजात किए। हम इसी बात पर सारा जोर लगा देते हैं, जबकि ये उनमें से ज्यादा अंधी कर देने वाली चीजें हैं जो कि वो कर सकते हैं। यकीनन बारिश जिस तरह रास्तबाज पर बरसती है, उसी तरह नरास्त पर बरसती है। भाई रोए, बारिश का पानी जिस तरह फसल पर बरसता है, बिल्कुल उसी तरह ये पानी जड़ी बूटियों पर भी बरसता है। बिल्कुल उसी बारिश की तरह, बिल्कुल वही रूल कुछ लोगों पर नाजिल होता है। लेकिन तब भी इसका मतलब ये नहीं होता कि अंदर से बाहर की तरफ उनकी फितरत बदल गई है। न कि एक बैरूनी इजहार या काबिलियत, बल्कि जिंदा खुदा की रूह अंदरूनी तौर पर उस शख्स को एक नया मखलूक बना देती है, ताकि उसका दिल या उस औरत का दिल खुदा के सामने फरोतन बन जाए। آپ کہتے ہیں خادم صاحب آپ کا مجھے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک ہے کہ دنیا کے 4 ارب لوگوں میں سے اور ان لاکھوں لوگوں میں سے کیا وہاں 1 درجن ہی ہوں گے؟ مجھے شک ہے کہ درجن بھر ہی ہوں گے جو اٹھائے جائیں گے۔ اس کے متعلق سوچیں، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو یسوع نے یہاں انجیل مقدس میں کہا ہے۔ اس کے متعلق سوچیں، اس سے کیا حاصل ہوا؟ لوگوں کے درمیان بد اخلاق ہونے کی وجہ سے ناجائز بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے جو کہ خرابی کی جڑ ہیں۔ دیکھیں، ہم یہاں ان باتوں کے لیے گھنٹوں کھڑے ہو سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سرے سے ہی سڑی ہوئی لوگوں کی نسل کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کوئی حیرانگی نہیں کہ وہ نشانوں کو نہیں دیکھ سکتے، کوئی حیرانگی نہیں کہ وہ انجیل کو نہیں سنیں گے۔ وہ سخت کیے گئے ہیں، پھر بھی وہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ نیک اور مذہبی ہوں۔ کیا یسوع نے ایسا نہیں کہا تھا؟ روح واضح طور پر فرماتا ہے، آخر زمانے میں لوگ تند مزاج، گمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے، سنگ دل، بے ضبط، نیکی کے دشمن اور دینداری کی وضع رکھنے والے ہوں گے۔ سمجھے؟ او آپ یقیناً نعرہ لگا سکتے ہیں، آپ یقیناً غیر زبانیں بول سکتے ہیں، یقیناً ایمان سے بدروحیں نکل جائیں گی، لیکن یہ وہ نہیں ہے جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ مجھ سے کہیں گے، بھائی برہنم، تو پھر ایک مسیحی کا کیا نشان ہے؟ کون نجات پائے گا؟ کیا بھائی برہنم آپ پائیں گے؟ میں اس کے لیے خدا پر بھروسہ کرتا ہوں، میں نہیں جانتا، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں وہ ہوں۔ میں روزانہ اپنی زندگی کا کلام کے ساتھ موازنہ کرتا ہوں۔ اگر میں اس کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو تب ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میں واپس دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو درست کرتا ہوں۔ خیر، آپ کہتے ہیں بھائی برینم، جب لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نجات یافتہ ہے؟ نہیں جناب، در حقیقت نہیں۔ میں نے جادوگروں اور جادوگرنیوں کو غیر زبانیں بولتے اور تمام قسم کی گھٹیا باتیں کرتے سنا ہے۔ میں نے لوگوں کو غیر زبانیں بولتے اور دوسرے آدمی کے بیوی کے ساتھ رہتے دیکھا ہے۔ میں نے لوگوں کو غیر زبانیں بولتے اور اچھلتے کودتے دیکھا ہے جیسے گھر میں آگ لگ گئی ہو۔ باہر جاتے اور دھوکے بازی کرتے ہیں، وہ چوری کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں۔ آپ کیسے اس کی توقع کر سکتے ہیں؟ نہیں جناب، چرچ سے تعلق رکھنا، چرچ میں ڈیکن ہونا اور اتنے متقی ہونا جتنے کہ وہ ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ سوچ سکتے ہیں وہ تو اتوار کو پٹرول خریدتے ہیں۔ نہیں، لیکن پیر کے دن کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ گندے اور گلے سڑے اور گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں۔ خدا دل میں سکونت کرتا ہے، نہ کہ بیرونی پن میں۔ یہ وہ کچھ ہے جو دل سے نکلتا ہے، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، ان لاکھوں میں سے صرف 8 نکلے۔ جیسا صدوم کے دنوں میں تھا، لاکھوں میں سے 3 نکلے۔ بس ابن آدم کے آنے پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور آپ بدعنوانی کو دیکھتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کیسے ہر ایک تصور جو انسان کے باطن سے نکلتا ہے، جسے اس نے باہر سے حاصل کیا ہے، اور شیطان پلیٹ فارم پر چلاک خادموں کو کھڑا کر دیتا ہے اور لوگوں کو وہی لینے دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کسی روز ایک شخص نے کہا، میں تمہیں اپنے پلیٹ فارم پر نہیں آنے دوں گا، تم نے تو میری عورتوں کو پاگل کر دیا ہے۔ نہیں، بلکہ وہ تو پہلے ہی پاگل ہے۔ یہ بات ان کے دماغ کو درست کر دے گی۔ انہیں بتائیں کہ ان کپڑوں اور ویسی چیزوں کو پہننا ترک کر دیں، اور خیر کسی کو تو ایسا کرنا ہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، کیا میں پاگل ہوں؟ کیا میں دیوانہ ہوں؟ یا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ میرے اندر سکون نہیں ہے، اس لیے مجھے ایسا بیان کرنا پڑتا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے تو پھر تم اپنی خدمت برباد کر لو گے۔ خیر، کسی بھی خدمت کو جسے انجیل برباد کرے گی اسے تو برباد ہی ہونا چاہیے۔ خدا ہمیں دلیری دیتا ہے، سچائی کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کے متعلق سچائی بیان کریں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ گناہ ہے، رسوائی ہے۔ یسوع نے کہا، دروازہ تنگ ہے اور راستہ سکڑا ہے۔ اور آپ لاکھوں یہ سوچتے ہیں کہ آپ سب میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین اور پینتیکوسٹل داخل ہونے جا رہے ہیں، اس دن آپ بے وقوف ٹھہریں گے۔ یسوع نے کہا، بہت سارے آئیں گے اور بادشاہی میں اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے، مجھے یہاں پر ہونے کا حق حاصل ہے۔ اس نے کہا، لیکن بادشاہی کے فرزند انہیں باہر پھینک دیں گے، جہاں رونا اور آہو نالا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ مسیحو، آج صبح اس کھاتے کو درست کریں۔ وہاں لاکھوں اربوں مرتبہ اقرار شدہ مسیح ہوں گے جو اپنے ہی اکڑ پن میں زندگی گزارتے رہے ہیں، وہ دروازے کو کھو دیں گے۔ یسوع نے ایسے ہی کہا۔ کتنے اس میں داخل ہوں گے؟ मैं नहीं जानता कितने होंगे, और सिर्फ एक बात है, खुदा उनमें से एक मुझे भी होने दे। यही है, वो मुनसिफ है, मुझे भी एक होने दे। आप कहते हैं भाई ब्रहनम, तो फिर आप कैसे बता सकते हैं जबकि एक मसीही? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे आपको ये बताने दीजिए जो कलाम मुकद्दस कहता है, यकीनन आप उस पर ईमान रखें। जब रूल कुछ को जमीन पर भेजा गया तो खुदा रूल कुछ के वसीला से हमसे हम कलाम हुआ। उसने पहले अपने फरिश्ते को भेजा और उसने कहा शहर में लोगों के दरमियान जा और उनके माथे पर मोहर कर दे, उन पर जो आहें भरते और मकरूहात और उन चीजों की दुरुस्तगी के लिए चलाते हैं। मकरूपन क्या है? जब एक औरत एक ऐसे लबास को पहनती है जो एक मर्द से निस्बत रखता है, तो ये खुदा को अजरदा कर देता है। क्या आपने कभी इर्द गिर्द से कुछ मकरूह चीजें हासिल की हैं? ये कैसे आपको रोगी बना देती है? आप उसका साथ नहीं दे सकते। जब एक औरत इस लबास को पहनेगी जो मर्द से ताल्लुक रखता है, तो खुदा भी वैसा ही महसूस करता है जैसा आप करते हैं। हो सकता है आप क्वायर में गीत गाती हो सकता है आप हर रोज दुआ करती हो और हर रोज नारे लगाती हो या हर रोज खुदा के लिए गीती हो, लेकिन तो भी आप खुदा की हजूरी में मुजरिम है। बिल्कुल यही बात है जो कलाम मुकद्दस फरमाता है। मकरूपन, जो ऐसी चीजों को बरकरार रखते हैं, तो फिर ऐसी ही चीजें उनका हिस्सा होंगी। खुदा ने हमें ऐसी चीजों के खिलाफ खड़े होने का फजल बख्शा है। अगर आपको खुद अकेला ही खड़ा होना पड़ता है, तो खड़े हो जाएं और खुदा के कलाम को अपने हाथ में थाम लें। ये कभी नाकाम नहीं होगा। अब हम एक ऐसे दिन में आ चुके हैं जहां लोगों की मकरूहात है और फरिश्ता आगे बढ़कर दोबारा मोहर लगा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है जो इसको करने जा रहा है, तो मुझे जेफरसन व्हील में से कोई एक शख्स तलाश करके दिखाएं। मुझे अपने शहर में से कोई एक शख्स ढूंढ कर दिखाएं जो आहें भरता और रोता है और मुसलसल परेशान और फिक्रमंद रहता है और उन मकरूहात के लिए जो शहर में हो चुकी हैं दुआ करता रहता है। क्या आप अपना हाथ उठा सकते हैं और इसे किसी एक शख्स पर रख सकते हैं? तो फिर इस कलाम को ले लें। वो दरवाजा तंग है, वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। बस ऐसे लोग हैं जिन्हें मोहर बंद किया जाना है। अरे मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ जो चर्च में जाते हैं, मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ जो क्वायर में गीत गाते हैं, मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ जो संडे स्कूल में तालीम देते हैं, मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ जो कि अजीम माशरों के सरबराह हैं, मैं आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ जो नारे लगाते हैं और बहुत सारे बेगाना जुबानें बोलते हैं, बहुत सारे वो काम करते हैं जो काम अंजील में मौजूद है। लेकिन मुझे यहाँ एक भी दिखा दें जिनके दिल दुनिया के गुनाहों पर बहुत परेशान हो। मुझे एक भी मनात दिखा दें जो आज खड़ा हो सके और इन तंजीमों को मुजरिम करार दे। मुझे एक भी मनात दिखाएं जो खड़ा हो और इन बातों को कहे और इन तंजीमों को मुजरिम ठहराए। ये उसके लिए बेहतर नहीं, उसको ठोकर मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा, यही उसके खाने की टिकट है। हैरानगी की बात नहीं है कि बिली ग्राम ने जैक मूर को बताया, कहा मत देखो कि इबादत कैसी होती है, कहा वो बैप्टिस्ट नहीं है और ना ही वो मेथोडिस्ट या पेंटिकोस्टल है, और कहा उनमें से तमाम लोग उसके खिलाफ हैं। यकीनन मैं वैसा नहीं कह सकता। वजह, मैंने कहा मैंने इसे बाहर अवाम में नहीं कहना, मैं इसे अपनी ही कलीसिया को कहता हूँ, क्योंकि मुझ पर भी आजमाइश की घड़ी है, मैं भी जदोजहद कर रहा हूँ। वो कहते हैं अगर आप आएंगे तो ये बेहतर ही होगा, लेकिन आप उसके मुतल्लिक कुछ मत कहना, आप शायद सिर्फ उसके साथ अपनी ही जिंदगी बचा पाओ। मैं वही बयान करूंगा जो खुदा ने बयान किया है, ये दुरुस्त है। उन आठ में से कोई एक यहीं कहीं होगा, उनमें से एक यहीं कहीं होगा, लेकिन उस दिन मैं ऐसी बातें कहने से कसूरवार होना नहीं चाहता कि मैंने कुछ अकीदों या कुछ कलीसियाओं की तालीम या कुछ तंजीमों से समझौता कर लिया था, इसलिए मैंने सच्चाई को बयान किया है। वो कहते हैं भाई ब्रहनम तुम क्यों नहीं अपनी खिदमत को चाहते जो कि बड़ी अजीम है, ये क्यों उन दूसरे लोगों की तरह नहीं बड़ी? ये ठीक है, ये बात सच है। जब मैं शहर में जाता हूँ तो क्या आप ख्याल करते हैं कि असेंबलीज ऑफ गार्ड वाले मेरे साथ तावन करेंगे? नहीं, मेरे ईमान पर वो कभी भी तावन नहीं करेंगे, शायद थोड़ी देर के लिए। क्या आपका ख्याल है कि मेथोडिस्ट वाले करेंगे? कोशिश करें और तलाश करें, एक हफ्ते के लिए मेरे मैनेजर बन जाएं। अगर आप जाएं तो यीशु मसीह के नाम में जाएं, ये दुरुस्त है। ओ बेशक वो आपको लेते हैं, यकीनन वहाँ आपको किसी जगह में ठहराते हैं, बस अगर आप उनके साथ किसी भी तरीके पर जो वो पसंद करते हैं मुत्तफिक नहीं होते, और फिर जब आप उस जगह को छोड़ते हैं तो वो कहेंगे अरे आप जानते हैं अब तो भाई ब्रैनम का दिमाग खराब हो गया है। अगर मेरा दिमाग खराब है तो फिर तालीम देने में बाइबल भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये वही है जो बाइबल ने कहा है। जी जनाब, गौर करें, यीशु ने कहा तुम मुझे क्यों बालजबूल कहते हो? तुम सुलेमान और उसके दिल के परखने वाले भेदों का यकीन करते हो? तुम उसके दिन को मानते हो? दक्कन की मलका दुनिया के आखिरी किनारे से आई ताकि उस नेमत को देखे, और जब उसने उसे देखा तो उसने यकीन किया। और आप जो यहाँ बैठे हैं हर रोज इसे देखते हैं फिर भी इसका यकीन नहीं करते, और उसके अपने भाइयों ने उसका यकीन नहीं किया था। उन्होंने कहा तू ईद में जा, उसने कहा लेकिन मैं तो अभी ईद में नहीं जा सकता। वो किसी दूसरे तरीके से गया क्योंकि उसके भाई उस पर ईमान नहीं रखते थे। ये दुरुस्त है क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। जब शागिर्दों का मौका आया कि सामना करें तो वो उस वक्त कहाँ थे? एक औरत और एक आदमी, यूहन्ना और मरियम उस सलीब के नीचे खड़े थे जबकि बाकी सब जा चुके थे। यही उसके खड़े होने का वक्त है, यही वो वक्त है, यही वक्त है जब खुदा काम कर रहा है, यही वक्त है जबकि मसीह जमीन पर है, यही वो वक्त है जबकि खुदा की कुदरत उसके लोगों में जुम्बश कर रही है। और लोग इन्हें जनूनी, पागल और दीवाने कहते हैं। हो, बिल्कुल वैसे ही कहते हैं, लेकिन यही वक्त है। यकीनन अदालत के रोज कुछ अजीम मायूसियां रूनमा होंगी। हो, शराबी जानता है कि वो अदालत के वक्त कहाँ खड़ा होगा, इसी तरह शराब का मुतलाशी भी जानता है कि वो कहाँ खड़ा होगा, इसी तरह कस्बी भी जानती है कि वो उस रोज कहाँ खड़ी होगी। जुआ खेलने वाला भी जानता है कि वो इस बात के लिए कहाँ खड़ा होगा, इसी तरह शराब पीने वाला भी जानता है वो इस बात के लिए कहाँ खड़ा होगा। उन्हें मायूसी नहीं होगी, लेकिन किनको मायूसी होगी? उन्हें जो सोचते हैं कि वो दुरुस्त हैं, यही हैं जिन्हें मायूसी होगी। जब वो वहाँ ऊपर पहुँचेंगे तो कहेंगे यकीनन हमने तेरे नाम से विद्रोहों को निकाला था, हम तेरे खादम थे, हम फलां फलां कलीसिया से ताल्लुक रखते थे, हमने अजीम मौजजात किए थे, ओ हमने मुनादी की, मैं कलीसिया में एक नगरान था, मैं तो एक बिशप था, मैं तो ये रहा था, ऐ बदकारों मेरे सामने से चले जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। ये है आपका मुकाम, यही मायूसी है। उसने कहा उनके बच्चों के बच्चे बादशाही में आएंगे और बैठेंगे और कहेंगे हमें यहाँ रहने का हक हासिल है, लेकिन वो वहाँ बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे जहाँ रोना और आहोनाला और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुँचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। मेरे प्यारे लोगों, ये आपके लिए है, आज सुबह इसे सुने, मैंने इसे कभी नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ इसको बताने का जिम्मेदार हूँ, यही सब कुछ है जिसका मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई दूसरा पैगाम बयान नहीं किया और ये सच्चाई है। तो भी सिर्फ थोड़े से लोग हैं जो निजात पाएंगे, जरा इस बात को याद रखें, बहुत ही थोड़े से, शायद आप उनमें से एक हों। भाई ब्रैनम तो फिर वो कौन है? मैं नहीं जानता, ना ही कोई और जानता है। हमें डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम करना चाहिए। आपको खुदा के साथ दुरुस्त होना है, और अगर आपका दिल इस बाइबल के साथ नहीं धड़कता तो फिर जरूर कोई गड़बड़ है, जरूर गड़बड़ है। कोई मसला नहीं, आपकी कलीसिया क्या कहती है, आप उसके वसीले बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन जो कुछ खुदा ने कहा है आपको उसी के जरिए अंदर दाखिल होना है। बाइबल ही वो किताब है जिसके वसीले आपकी अदालत होगी, इसके साथ ठहरे रहें। ओ आप कहते हैं ठीक है, मैंने खुदावंद यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है, ये दुरुस्त है, यही बाइबल कहती है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी इसकी पैरवी नहीं करती तो बपतिस्मा याफ्ता होना आपके लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। आप कहते हैं ठीक है, मैंने रूह कुछ को हासिल किया है, ये अच्छी बात है, यही है जो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर जिंदगी इसके मुआफिक नहीं है, याद रखें जड़ी बूटियाँ भी बिल्कुल वही कुव्वत हासिल करती है जो गंदुम को बढ़ाने के लिए बरसती है, वही जड़ी बूटियों को भी नारे लगाने के काबिल बनाती है, वो पस्त हिम्मत जड़ी बूटियाँ ठीक ऊपर खड़ी हो जाती हैं और बिल्कुल उतनी ही खुश होती हैं जितनी के गंदुम खुश होती है। ये बात दुरुस्त है, दोनों एक ही जिंदगी के जरिए जिंदा रहती हैं, और एक गुनाहगार भी खुदा की हजूरी में ठहर सकता है, फता के नारे लगा सकता है और एक मसीही की तरह जिंदगी गुजार सकता है जबकि दिल में कुछ मुख्तलिफ है। उसके पास बिल्कुल वही बदरुहों को निकालने की कुव्वत हो सकती है। यीशु ने इसी तरह कहा था, वो अंजील की मुनादी उतनी ही अच्छे तरीके से कर सकता है जितनी के कोई दूसरा खादम कर सकता है। ये बिल्कुल वही बात है जिस तरह यीशु ने कही थी, बाइबल यही सिखाती है। जी जनाब, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो के पहाड़ों को हटा दूं और ये सारे काम करूं, मैं उसके नाम से मुनादी करूं, मैं उसके नाम से बद्रुहों को निकालूं, उसने कहा फिर भी मैं कुछ नहीं हूँ। बस वो ऐसा कर सकता है मगर फिर भी कुछ नहीं है, क्या आप इसको समझ गए? अब एक मसीही होते हुए ये काम आपको अपने दिल से करना है। अब तंग दरवाजे से दाखिल हों। کیونکہ وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس نسل کے ایمانداروں میں سے لاکھوں ضرب لاکھوں اس جگہ میں جائیں گے، لیکن وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جس میں صرف آپ اور مسیح اکیلے ہیں۔ وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور بہت تھوڑے ہوں گے جو اسے پائیں گے۔ اب یہ ہمارے خداوند کا کلام ہے۔ میرے خدایا، وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ وہاں کھڑا ان کے خیالوں کو پرکھ رہا تھا، اور انہوں نے کہا وہ بالزبول ہے۔ خیر، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک انسان ہے، یہ حکمت کہاں سے آئی؟ انہوں نے اس کے اپنے شہر میں یہ بات کہی۔ جب آپ یہاں شہر میں چلتے پھرتے ہیں تو یہ اسی طرح معلوم ہوتا ہے۔ میں یہ بات آپ لوگوں کی کوئی رسوائی کے لیے نہیں کہتا۔ آپ مسیحی ہیں اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ شہر میں چلتے پھرتے ہیں اور یہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی طاقت آپ کو نیچے مار گراتی ہے۔ یہ جگہ رد کر دی گئی ہے، یہ شہر بھی رد کر دیا گیا ہے۔ بلی گرام نے کیا کہا تھا جب وہ لوئس ویل میں داخل ہوا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ شیطانی جگہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھی۔ یہ اخبار میں رقم ہے، لکھا ہے آپ صرف شیطان کے غلبے محسوس کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ میں نے اسے محسوس کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ جب یسوع خاص اپنے گھر کو لوٹا تو اس نے کہا کہ ان کی بے اعتقادی کی وجہ سے وہ بہت سارے معجزات نہ کر سکا۔ اس نے کہا ایک نبی اور ایک خادم سوائے وہ اپنے ہی ملک میں اور اپنے ہی لوگوں کے درمیان اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ سمجھے، آپ اس سے باز نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ کلام مقدس نے اسی طرح کہا ہے۔ سمجھے، اب جب آپ یہاں شہر میں چلتے پھرتے ہیں، اور مجھے مت بتائیں، میں جاننا نہیں چاہوں گا، میں لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں جو میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں او بھائی برینم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں یہ جھوٹ ہے، آپ جانتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اگر خدا مجھے دلوں کے بھید بتا سکتا ہے تو پھر وہ مجھے یہ کیوں نہیں بتا سکتا؟ یقیناً لوگوں کے درمیان اور شہروں میں جب وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا آپ جانتے ہیں میں نے وہاں ایک فلاں فلاں کو دیکھا، کہاں پر، یہ کہاں تھا، وہاں اوپر، ارے ہم اس شخص کو جانتے ہیں، آپ یہ محسوس کرتے ہیں۔ مجھے آپ کو بتانے دیجئے، آپ اپنے گھر میں کسی کو آنے دیتے ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا، اور اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے اسے بٹھاتے ہیں اور اس عجیب احساس کو محسوس کرتے ہیں۔ اب اس کو 14,000 سے ضرب دیں، تب آپ اس بات کو پائیں گے جس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ ایک ایسے مقام میں داخل ہوتے ہیں جہاں ہر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، جہاں آپ عزت افزائی کو محسوس کرتے ہیں۔ او میرے خدایا، ذرا دیکھیں، آپ وہاں ہمیشہ ٹھہرنا چاہیں گے۔ یہ بات ہے، دیکھیں، یہ ایک روح ہے، اور لوگ نہیں جانتے یہ کیا ہے۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیوں لوگ اتنے نجس ہیں، خواتین کو کیا اچھا بناتا ہے، کون ان کو اچھی عورتوں کو بہودہ کپڑے پہننے اور باہر جانے پر اکساتا ہے، کیا چیز ہے جو 16 سالہ چھوٹی لڑکیوں کو ایسے کپڑے پہننے پر اکساتی ہیں جو اسے اپنی ماں کے سامنے نہیں پہننے چاہیے، اور پھر وہ گلیوں میں جاتی ہے۔ یہ اس بچی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ بچی اس سے کوئی بہتر بات جانتی ہی نہیں، لیکن اس کے لیے کچھ خادم پلیٹ فارم پر اپنی ذمہ داری کیوں نہیں سر انجام دے رہے، وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے۔ یقیناً خواتین جب سڑکوں پر بالکل اڑیاں لباس پہن کر اور ایسی ہی چیزیں پہن کر جاتی ہیں تو گناہگار ان پر گورتے ہیں، اور وہ اس بات کو جانتی نہیں۔ دراصل وہ اتنی ایک سوروار ہیں جیسے کہ وہ اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ یسو نے اسی طرح کہا تھا، یسو نے کہا جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا، اور اس بات کے لیے آپ کو عدالت کے دن جواب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں ایک سخت آدمی ہوں، میں سخت نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آنے والے غضب سے بھاگیں، کلوری پر چلے جائیں اور چلائیں جب تک آپ کا دل اس کی روح سے معمور نہ ہو جائے جو آپ کی پشت کو دنیا کی ساری چیزوں سے موڑ دے گا، اور اس کے حضور راست بازی سے چلیں اور آپ کا دل اس کے لیے جلتا رہے۔ یہ محبت ہے، نوکری نہیں ہے۔ مسیح ایک نوکری نہیں ہے، بلکہ مسیح کی خدمت کرنا یہ ایک محبت ہے۔ جو مسیح کی خدمت کرتی ہے یہ آپ کو خوشی دلاتی ہے، یہ آپ کو مجبور کرتی ہے، یہاں تک کہ پھر آپ کی زندگی کی ہر دھڑکن اس کے ساتھ دھڑکنے لگ جاتی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ گناہ میں فرق کرنے لگتے ہیں۔ اور وہ دنیا پر رویا، نوح کے دنوں میں جب اس نے دلوں پر نگاہ ڈالی تو اس بات نے خدا کو رنجیدہ کیا، اور یسوع پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور کہا اے یروشلم کتنی ہی بار میں نے چاہا تجھے اپنے پروں تلے جمع کر لوں، لیکن اب تیرا وقت آ پہنچا ہے اور تمہارا گھر ویران کیا جاتا ہے۔ ابن آدم کے آنے کے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ حقیقی سچے ایمانداروں کا دل شکستہ ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ٹھیک اسی گھڑی اس زمین پر ایک بیداری کو پھیلنا چاہیے۔ یہ کیسے ایک ناجائز اولاد کے گروہ کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ آغاز ہی سے مجرم ہے؟ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے سمندر میں ایک جال ڈالا اور جب اس نے اسے کھینچا تو اس میں کچھوے، سانپ، مینڈک، کچھوے اور کچھ مچھلیاں بھی تھیں۔ کیا اسے حق نہیں کہ جسے چاہے وہیں کنارے پر پھینک دے؟ اسی طرح سے خوشخبری کرتی ہے۔ یہی ہے جو بلی گرام، اورل رابرٹس اور میں خود کر رہا ہوں، اور تمام دوسرے خادم یہی انجیل کی منادی کر رہے ہیں۔ اسے اندر ڈالتے ہیں اور اسے کھینچتے ہیں۔ خداوند، یہ یہاں ہے۔ لیکن ہم ہر وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہم تلاش کرتے ہیں اس سے قبل کہ آپ واپس نہ چلے جائیں، لیکن وہ ٹھیک دوبارہ واپس تالاب میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ابتدا ہی سے کچھوا تھا، اس لیے اسے خوشخبری کے جال میں پکڑ کر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شروع ہی سے کچھوا تھا، وہ شروع ہی سے ایک ترائپل تھا، وہ شروع ہی سے ایک سانپ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کبھی چرچ آتا، وہ ایک ریاکار تھا۔ یہاں تک کہ اس کی کبھی خواہش ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی شراب نوشی، جوا بازی اور تمباکو نوشی اور جھوٹ بولنے اور چوری کرنے کو ترک کرے۔ وہ صرف اس لیے چرچ میں آیا کیونکہ وہ جہنم سے خوف زدہ تھا۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جہنم کا مزید امیدوار بناتے ہیں، اور یہ سچ ہے، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ خداوند، او خداوند، مجھے جانچ خداوند، ٹھیک ابھی ہی میرے مقدمے کی تائید کر۔ اس طریقے کی منادی کے بعد مجھے عدالت میں تیرے سامنے نہ آنا پڑے۔ او خداوند، اگر کوئی بھی ناپاک چیز مجھ میں ہے تو مہربانی سے اسے دور کر دے۔ ہم اس دن کو دیکھتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جبکہ مرد اور خواتین بہت ہی زیادہ سخت بنتے جا رہے ہیں، یہ شرمندہ ہیں۔ ایک مرتبہ تو نے کہا یہاں تک کہ سیون کی بیٹیوں میں شرم و حیا نہ رہی، کیونکہ ان کی پاک دامنی لے کر دور کر دی گئی، یہاں تک کہ ان میں کوئی شرم و حیا باقی نہ رہی۔ اے خداوند، اس کے متعلق خیال کر۔ اور ہم جانتے ہیں کہ گھڑیاں وہاں پیچھے دور ٹک ٹک کر رہی ہیں، صرف ایک یا دو منٹ مزید ہیں اور پھر عظیم تباہی آ جائے گی، اور پھر جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے گا۔ اے خدا، آج صبح ہم سب کو بیدار کر دے۔ خداوند، ہمیں جھنجھوڑ۔ ہم نشانوں کو ظاہر ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس بات کو جاننے کے لیے اپنی آنکھوں کو کھول رکھا ہے۔ خداوند، ہم لاکھوں لاکھوں کو دیکھتے ہیں جو کہ واپس مڑ گئے ہیں اور دور جا چکے ہیں۔ اے خداوند، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں حیران ہوتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ خداوند، کیا یہاں کوئی چیز موجود ہے؟ اگر اس کے لیے مزید پیغام، مزید دعا اور مزید کسی چیز کی ضرورت ہے تو خداوند میری مدد کر، تاکہ ہو سکے تو میں لوگوں میں پیغام کو لاؤں۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن وہ مسلسل اس سے پیچھے پھر رہے ہیں۔ تو اپنے عظیم نشانوں اور عجیب کاموں کو سر انجام دے رہا ہے تاکہ لوگ ٹھیک چلیں۔ کیا تیرے اس کلام کو پورا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ اس کا وقت نہیں ہے؟ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک میرا باپ اسے کھینچ نہ لے، اور وہ سب جو باپ نے مجھے دیے ہیں وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ خداوند خدا، آج صبح یہاں بخش دے کہ لوگ بیدار ہو جائیں اور زمین پر اس آخری نشان کو دیکھیں۔ اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ تو لوگوں کو کچھ بخشے گا۔ آج صبح یہاں ان ادنا لوگوں کو برکت دے۔ خداوند خدا، بھائی نیول سے شروع کر، اس کے بدن کو شفا دے۔ خداوند، میدہ خراب ہونے کی وجہ سے آج صبح یہ بیمار ہے، میں دعا کرتا ہوں تیرا شفایا ہاتھ اس پر ہو، اس کی روح کو جنبش دے۔ اے خدا، اس جماعت کے درمیان جا، یہاں مرد اور خواتین بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں میں شاید دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکوں جب تک کہ عدالت کا روز نہ آ جائے۔ میرے پاس دینے کے لیے ایک حساب ہے، اس لیے کہ میں تیرا کلام پڑھ چکا ہوں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ اے خداوند، ان میں سے کچھ وہ تھوڑے ہونے دے۔ کیا خداوند تو ایسا کرے گا؟ یہاں موجود ہر شخص کو یہ بخش دے۔ میں دعا کرتا ہوں جیسے کہ ایک انسان ہوتے ہوئے میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔ خداوند، جیسے کہ میری مدد کرنے کے لیے یہ لوگ میرے لیے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر میں بھوکھا ہوں تو یہ مجھے کھانا کھلائیں گے، اگر مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے تو یہ انہیں خریدیں گے، یہ لوگ مل کر میرے لیے کار خریدیں گے تاکہ انجیل کی منادی کروں۔ وہ کوئی بھی کام اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اے باپ، آج صبح ان کی روحوں کو ڈھونڈ لے، مہربانی سے ایسا ہی کر، اور انہیں بھی اپنی حضوری میں تلاش کرنے کی اجازت دے۔ میں نہیں جانتا، مجھے بھروسہ ہے ان میں سے ہر ایک اس چناؤ میں ہے، اور خداوند مجھے بھی وہاں ہی رکھ۔ اور اگر مجھ میں کوئی ایسی وجہ ہے جس سے میں وہاں نہیں جا سکتا تو خداوند ذرا اسے مجھ پر ظاہر کر دے تاکہ میں اسے ٹھیک کر لوں اور ابھی درست ہو جاؤں۔ خداوند، میں یقیناً درست ہونا چاہتا ہوں تاکہ اس دریا پر مجھے کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ میں اس دن اندر جانا چاہتا ہوں۔ और मैं नहीं जानता ऐसा कब होगा, शायद ये आज अभी ही हो जाए। बस मुझे जानने में मदद कर, इन लोगों के जानने में मदद कर। और जब हमारे दिल हमें खुशी से भरे मालूम होते हैं, ओ हम रेडियो पर एक बेहतरीन पैगाम को सुनकर लुत्फंदोज होते हैं या चर्च में जाते हैं, हम एक बेहतरीन पैगाम की हौसला अफजाई करते हैं। हमें कहीं भी यीशु मसीह की गुफ्तगू के बारे में बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन खुदावन गुनाह हम पर कितना बड़ा बोझ है और ये हमारी आंखों में आंसू लाता है। हम उसके खिलाफ आहें भरते हैं और उन तमाम मकरूहात के खिलाफ उठ खड़े होते हैं जो इस शहर में रूनमा हो रही हैं। खुदावन खुदा के फरिश्ते को हम पर जाहिर होने दे और हमें मखसूस कर खुदावन ये बख्श दे। इसलिए कि जब खुदावन यीशु आने वाला है तो अब हमारे दिलों को तैयार कर और हमें अपने सच्चे निशान दे, इसलिए कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, ताकि हम ये जानते हुए इस नस्ल के इख्तिताम से पहले आखिरी निशान को हासिल कर लें। और हम हरामकारी देख रहे हैं कि जब आदमी अपनी ही कौम में रहता है और उसके दूसरे आदमियों की बीवियों से बच्चे पैदा होते हैं और छोटी लड़कियां सड़कों पर घूमती हैं और सैकड़ों हर साल स्कूल से दूर चली जाती हैं और 13-16 साल की उम्र में माँ बन जाती हैं, और इसमें कोई इज्जत वाली बात नहीं है। और कैसे ये औरतें अपने आप को सिगरेट नोशी और शराब नोशी और टेलीविजन और दीगर ऐसी चीजों से बर्बाद कर रही हैं, इसे मजीद बच्चों के जेनों को खराब कर रही हैं। ऐ खुदावन, ऐसी चीजें कितना अरसा ठहर सकती हैं, जबकि तू एक मुकद्दस खुदा है। ऐ बाप, मैं आज कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ खुदावन, जैसे कि जल्दी कुछ होने वाला है। मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ, लेकिन खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि जो करना है उसे तू हमारे दिलों में बिठा दे। खुदावन ये चीजें बख्श दे, हम यीशु के नाम से इन्हें मांगते हैं, आमीन। वक्त करीब है। हर एक बाशऊर शख्स जानता है कि कुछ मुकरर शुदा वाकया होने को है। इस इमारत में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि दुरुस्त शऊर रखता हो और ना जानता हो कि दुनिया इन हालात में कायम नहीं रह सकती। दोस्तों, हम कायम नहीं रह सकते, यहाँ कोई भी चीज दायमी नहीं है। आपका खादम और आपका भाई होते हुए कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसकी तरफ मैं आज सुबह आपकी रहनुमाई कर सकूं, सिवाय यीशु मसीह के जिसे मैं जानता हूं। जरा उन चीजों के मुतालिक सोचे जो नबूवतें की गई हैं, जो आमदेसानी से पहले वक़ू पज़ीर होनी है। इसके मुतालिक हर एक बात जो मैं जानता हूं पूरी हो चुकी है। आप कहते हैं हैवान के निशान के मुतालिक क्या ख्याल है, वो मुसीबत के दौर में होगा, तब तक कलीसिया जा चुकी होगी, क्या इन पर निशान नहीं लगेगा, ये जा चुके होंगे, समझे। निशान अभी ही लग रहे हैं और निशान अगली नस्ल को जाहिर कर रहे हैं। खुदा की तरफ दौड़े, उसकी जानब जल्दी उड़ान लें। हम फक्त एक मिनट के लिए इंतजार कर रहे हैं और आज सुबह मैं हैरान हूँ और मैं आपके एहसास को महसूस करता हूँ, मैं आपकी समझ को महसूस करता हूँ। आप में से हर एक सोचने की कोशिश कर रहा है कि ऐ खुदा मुझे जांच। इसी तरह मैं महसूस करता हूँ दोस्तों, मैं महसूस करता हूँ कि ये पैगाम बिल्कुल इसी तरह का है जो लोगों में मकबूल नहीं है। आप इन्हें मुजरिम ठहराते हैं और आप इन्हें कमतर बनाते हैं। किसी को तो ये करना है, मेरी ख्वाहिश है कि ये करने वाला कोई और हो, लेकिन ये करना मेरी किस्मत में लिखा है, इसलिए अगर मुझे ही औरत की कांट छांट करनी है तो मुझे करनी पड़ेगी। अगरचे मैं, दाऊद ने कहा, मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। ये सच है, जो कुछ खुदा चाहता है आप करें तो उसे करें, शर्मिंदा मत हो अगर वहाँ। और याद रखें, मैं जानता हूँ ये एक अजीम बात है, जबकि आप कहते हैं भाई ब्रैनम आपने कहा कि सिर्फ 8 जाने बचेंगी। मैं नहीं जानता कितनी जाने बचेंगी, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, इस तरह की घड़ी में वो बहुत थोड़े से होंगे। जरा सोचें, उस दिन वो कहाँ था, कितने लोग बचे थे। नूह के दिन के बारे में और लूत के दिन के बारे में और उन तमाम के दिन के बारे में सोचें। उसने कहा इब्ने आदम के आने के दिन भी ऐसा ही होगा, वजह इसलिए कि वो दरवाजा तंग है और रास्ता सुकड़ा है। आप देखें, आप खुद ही उसके साथ जाएं और बस यही बात है, समझे, और उसके पाने वाले थोड़े होंगे। कितने ईमान रखते हैं कि ये अंजील की सच्चाई है। यीशु ने इसी तरह कहा, उसके पाने वाले थोड़े होंगे, बिल्कुल बहुत ही थोड़े से, उन थोड़ों में से एक बने। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, ये जाफशानी का काम है, आपके लिए एक इंसानी मोहब्बत को महसूस करते हुए ये मुझ पर दबाव है कि इस बात को कहूँ, इसलिए कि खुदा की मोहब्बत मुझे आपको बताने पर मजबूर करती है। अब बिल्कुल वही रूल कुछ जिसने इब्राहिम के दिनों में काम सर अंजाम दिए, मसीह के दिनों में काम सर अंजाम दिए, और यहाँ भी बिल्कुल उसी काम को सर अंजाम देने का वादा किया गया है, वो यहाँ मौजूद है। अब अगर मैंने आपको सच्चाई बताई है तो फिर खुदा इस सच्चाई को पूरा करने पर कादिर है। अगर मैं अपनी बात को पूरा नहीं करता तो मैं अपनी बात पर कायम रहने वाला शख्स नहीं हूँ, और अगर आप अपनी बात को पूरा नहीं करते तो आप भी अपनी बात पर कायम रहने वाले शख्स नहीं हैं। अब शायद मैं आपसे किसी चीज का वादा करूं और उसे पूरा ना कर सकूं, तो भी मैं आपको बताने आऊंगा। अगर मैं कोई बात आपको बताने का जिम्मेदार हूं और उसे आपसे छुपाता हूं, तो मैं एक रयाकार हूं। अगर मैं आकर आपको बताता हूं, मैं आपका कर्जदार हूं, लेकिन मैं आपको अदायगी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ही अच्छा करूंगा जितना कि मैं कर सकता हूं, तब आप मुझे माफ कर देंगे और मेरी मदद करेंगे, समझे? हम भी कुछ चीजों में खुदा के कर्जदार हैं। हम अपनी जिंदगियों के लिए उसके कर्जदार हैं। हमें इस बात के मुतालिक दयानतदार होना चाहिए। बाहर निकलकर ऐसा कुछ ना कहें, ऐसा कुछ ना कहें, अच्छा अब देखें, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं पेंटिकोस्टल हूँ, मैं चर्च ऑफ गॉड का हूँ, मैं नाजरीन का हूँ, मैं पिलग्रम होलीनेस का हूँ, ऐसा मत सोचें। इनमें से लाखों जहन्नम में होंगे। आप मसीह में एक मसीही बने। कितने कहेंगे, भाई ब्रैनम मैं खड़ा होना चाहता हूँ, अब मुझे दुआ में याद रखें। खुदा आपको बरकत दे। खुदावन तू इनके हाथों को देख। इस अजीम वक्त में रूल कुसने आज सुबह इस इमारत को पुरसकून बना रखा है। मैं तेरी हजूरी को महसूस करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ तू यहाँ अपने कलाम को इज्जत देने के लिए मौजूद है। मैं खुदावन ने लगाया और मैं ही दिन रात इसे पानी दूंगा और कोई इसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। खुदावन तूने अपने कलाम को एक मकसद के लिए भेजा है और खुदावन तू इसे ऐसा ही करेगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है कि तू कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो यकीन ना कर पाए, तेरे जमाने के लोग यकीन ना कर पाए कि रूल कुछ तुझ में बसा हुआ था और तूने अपने आप को एक इंसान होते हुए खुदा साबित किया। तू ही कुंवारी से जन्म लेने वाला खुदा का बेटा है जो जमीन पर हमें हमारे गुनाहों से मखलसी देता है, और उन्होंने तुझ में खुदा की रूह को देखा था, लेकिन उन्होंने उसे मुख्तलिफ साबित करने की कोशिश की। खुदावन तूने उनको बताया, ये मैं नहीं हूँ जो इन कामों को करता हूँ, बल्कि ये मेरा बाप है जो मुझ में रहता है, वो ये काम करता है। और अगर तुम इब्राहिम को अपना बाप कहते हो तो इब्राहिम ने मेरे दिन को देखा, यकीनन उसने देखा जब वो उसके करीब खड़ा था और उसे वो काम करते और निशान दिखाते देख रहा था। उसने मेरे दिन को देखा और खुश हुआ, कहा तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। कैसे खुदा ने एक कुंवारी पर साया डाला और एक बेटा तवल्लिद हुआ, एक कुंवारी से जन्म लिया और खुद अपनी कुदरत की मामूरी से उस एक इंसान में रहा, और कैसे उसने उसी बदन से बिल्कुल वही खून लिया जिसे उसने एक कुर्बानी के लिए दिया और एक इंसान को मुकद्दस किया ताकि खुद उसमें रह सके, ताकि आखिरत के इख्तिताम तक अपने काम को बेदार रखे। ऐ खुदा लोगों को उठा खड़ा कर, उसे देखें, ये बख्श दे हर एक जिन्होंने अपने हाथ उठा रखे हैं, उन्हें निजात दे, उनके दिलों को पाक कर। खुदावन मेरे हाथ भी उठे हुए हैं, ऐ खुदावन मुझे भी पाक कर, इसलिए कि ये दुरुस्तगी का घर है, यही एक जगह है जहां हमें पाक किया जाना चाहिए। आज सुबह रूह कुछ को हमें धोने दे और हमें नापाकी से पाक करने दे। खुदावन हम दुआ करते हैं कि एक शख्स भी इस जगह को छोड़कर ना जाने पाए जब तक के रूल कुछ से ममूर ना हो जाए। जब ऐसा होता है तो कोई भी जज्बा बैरूनी तरफ से आने ना पाए, बल्कि खुदावन अंदर दाखिल हो जा और उस खोल को उतार दे और हमें दिखा हम क्या हैं। खुदावन ये बख्श दे और फिर हमें अपनी रूह से ममूर करके एक ऐसा दिल दे जो सच्चा और खालिस हो। जब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं तो आजमाइशों और सख्त मसाइब के इस वक्त में जैसे कि हम तेरे साथ चल रहे हैं, तो तू हमारे साथ मिठास और मोहब्बत में बढ़ता रहे, जबकि शहर के गुनाहों के लिए आंसू हमारे रुखसारों पर बह रहे हैं। इसलिए रूह कुछ नीचे निगाह डाले और कहे, यहाँ एक है जिस पर मैं निशान लगा सकता हूँ, वो मेरा है, वो मेरी है। खुदावन ये बख्श दे, काश ये आज हमारे दरमियान मिले। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
When I come to the river,
जब मैं इख्तिताम के रोज दरिया पर पहुंचूंगा तो दुख की आखिरी आंधी भी गुजर जा चुकी होगी। वहाँ कोई इंतजार कर रहा होगा जो मुझे राह दिखाएगा। मुझे अकेले को यर्दन पार करना ना पड़ेगा। मुझे अकेले को यर्दन पार करना ना पड़ेगा। यीशु मेरे तमाम गुनाहों का कफारा देने के लिए मुआ। जब तारीकी को मैं देखूंगा तो वहाँ वो मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा। मुझे अकेले यर्दन पार करना ना पड़ेगा। मैं अभी ही उसे जानना चाहता हूँ। बेशकीमत खुदावन, मेरे हाथ को थाम ले और मुझे बाहर निकाल और मुझे खड़ा होने दे। खुदावन, मुझे यहाँ हर उस चीज के खिलाफ जो गलत है और हर एक जो देखने में गलत नजर आती है, खड़ा होने दे। मुझे परवाह नहीं कोई क्या कहता है, खुदावन बस मुझे खड़ा होने दे। जो मैं कर सकता था वो सब मैं कर चुका हूँ, बस खड़ा होने में मेरी मदद कर। खुदावन मेरे हाथ पकड़ ले और इसी के जरिए मुझे खींच ले। कुछ कर, मुझे खड़ा होने दे। और जब ये चीजें, इस दुनिया का माल खजाना और इसकी शानो शौकत और इसकी चमक दमक आती है, तो मेरी आंखों को इनकी जानिब से अंधा कर दे और मुझे सिर्फ उसी को देखने दे जो मेरे लिए मुआ। चाहे उसकी कीमत मेरा हर एक दोस्त हो, चाहे उसकी कीमत मेरी हर एक चीज हो, इस चीज की कोई मायने नहीं है। मैं मजबा पर इन तमाम से दस्तबरदार होता हूँ। बस यही बात है, बस मुझे वफादारी से खड़ा होने दे। और किसी रोज जब सांसें मेरे चेहरे के मुखालिफ जा रही होंगी और मैं जानता हूँ कि मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा और मेरे दिन खत्म हो जाएंगे और मेरा वक्त खत्म हो जाएगा और मेरा काट अलमारी से ले लिया जाएगा, मैं अकेले यर्दन पार करना नहीं चाहता। वो वहाँ मौजूद होगा। जी हाँ, जब तारीकी को मैं देखूंगा तो वो मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा। मुझे अकेले यर्दन पार करना नहीं पड़ेगा। अगर मैं अब उसके लिए खड़ा होऊंगा तो तब वो मेरे लिए खड़ा होगा। मैं उसके लिए जीऊंगा जो मेरे लिए मुआ। तो फिर जिंदगी कितनी खुशोखुरम होगी। इस तरीके से मैं खड़ा होना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि बीमार लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या उसने कोई कार्ड दिए थे? मैं भूल गया हूँ। क्या उन्होंने कार्ड दिए? क्या कोई कार्ड दिया गया है? किसके पास दुआ या कार्ड है? नहीं, मैं जरा रूल कुछ का इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ ईमान रखते हैं तो सिर्फ ईमान रखें, शक ना करें। अगर खुदा मुझ पर आपकी तकलीफ जाहिर कर दे, ये जो कुछ भी है, मैं नहीं जानता हूँ। अगर आपने अपना हाथ उठाया है तो आप मुझे नहीं जानते और ना ही मैं आपको जानता हूँ। अगर खुदा यहाँ जाहिर कर दे तो क्या आप ईमान रखेंगे कि ये बिल्कुल वही फरिश्ता है जो वहाँ पीछे तबाही से पहले पैगाम लाया था? तो ये वही फरिश्ता होगा जो ठीक अब एक दूसरी तबाही से पहले ये पैगाम ला रहा है। क्या आप उस पर ईमान रखेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना हाथ बुलंद करें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। खुदावन इसे बख्श दे। वो मेरे करीब बैठा हुआ है। यहाँ एक और भी है जो मेरे करीब बैठा हुआ है। ये मिसेज स्नाइडर है या ये मिसेज मर्फी है, यही इसका नाम है, जो ठीक यहाँ बैठी है। मैं इन्हें जानता हूँ। मैं इस आदमी को नहीं जानता, वो मेरे लिए अजनबी है, लेकिन खुदा इसे जानता है। अगर खुदा इसे अभी जाहिर कर दे, आप में से कितने जानते हैं कि ऐसा नहीं होता? मुझे मत देखें, जैसा कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो एक कैंटकी का देहाती हूँ। हत्ता के मेरे पास ज्यादा तालीम भी नहीं है। मुश्किल से मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। लेकिन एक बात है जिसे मैं जानता हूँ कि मैं उसे जानता हूँ, और यही सब कुछ है जिसे जानने की फिक्र करना चाहिए। अब इस बात पर तवज्जो मत दें कि मेरी ग्रामर कैसी है। शायद आप सोचते हो आज सुबह मेरा पैगाम और सब कुछ तरतीब से बाहर था। आप इसको एक मरतबा बाइबल के साथ तरतीब दें और देखें कि आपका टारगेट ठीक जीरो पर नहीं है। अपने आप को वहाँ रख कर देखें, आपकी सलाहियत बड़ी है। इसे अपने ख्यालों के साथ तरतीब ना दे, बल्कि उसके साथ तरतीब दे जो उसने कहा है। वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है और उसके पाने वाले थोड़े हैं, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उसमें दाखिल होने वाले बहुत हैं, अरबों उसमें जाएंगे, और शायद 10 लाख में से एक एक इस तरीके से आएगा। आप यहाँ पर हैं, यही है जो उसने कहा। अब उसने कभी ये तादाद नहीं बताई, लेकिन उसने कहा जैसे नूह के दिनों में हुआ यानी 8 जाने, जैसे सदूम के दिनों में हुआ यानी 3 जाने, उस सारे शहर में से आग से सिर्फ 3 लोग बचे, इसी तरह से होगा। अब अगर कोई वाकई रूहानी है तो मैं चाहता हूँ कि आप इस आदमी पर निगाह डालें जो यहाँ बैठा है। वो मतवातर मुझे देख रहा है जैसा कि वो देख सकता है। उसने हाथ उठाया हुआ है, लेकिन मैं उसे नहीं जानता, उसे कभी नहीं देखा और ना ही उसके बारे में कोई बात जानता हूँ। उसने वहाँ बैठे हुए मुझ पर निगाह लगा रखी है। لیکن دیکھیں وہ دعا کر رہا ہے اور وہ ایک رابطہ ہموار کر رہا ہے. اب یہ درست ہے. اب اگر خداوند مجھے بتا دے کہ وہ آدمی مجھ سے دور بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہماری پہلی ملاقات ہے اور وہ یہاں تشریف فرما ہے, اگر خداوند مجھ پر ظاہر کر دے کہ اسے کیا ہے, میں اسے شفا نہیں دے سکتا. میں ایسا نہیں کر سکتا, میں ایسا نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا پہلے ہی یہ کام کر چکا ہے. لیکن یہ آپ کے ایمان کو بڑھائے گا. اب ہر ایک جو دیکھتا ہے کہ وہ ٹھیک یہاں اسی روح کے ساتھ موجود ہے, اور یاد رکھیں آخری وقت سے پہلے یسوع نے اس کا وعدہ کیا ہے اور یہ ہمیشہ ہی آخری نشان رہا ہے. کسی روز میں اور لیو گلی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم میں سے کوئی بات کر رہا تھا, اور میں نے وہاں ایک تبدیلی کو آتے محسوس کیا کہ ایک تبدیلی آ رہی ہے. اور جب ہم نے اس پر گفتگو کی, کیونکہ وہ مزید میری خدمت میں تبدیلی کا باعث نہیں ہو سکتی تھی, لیکن وہ تبدیلی میرے اندر ہو گئی. میں ہمیشہ سے کمزور رہا ہوں اور لوگوں نے میری رہنمائی کی اور میری قیادت کی اور اس راہ پر اور اس راہ پر بھیجا. اگر میں نے طویل عرصہ پہلے ہی کوئی کام کیا ہوتا جو خداوند نے مجھے بتایا تھا, تو آج میں اس مصیبت میں نہ ہوتا. اب میں اسے اگلے ہفتے باہر جا رہا ہوں تاکہ خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزاروں. جی ہاں جناب, میں لازمی آسمان سے سننا چاہتا ہوں. میں کمزوری نہیں چاہتا, میں اپنے اعتقاد پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں. وہ آدمی وہ ٹھیک پیچھے بیٹھا ہوا ہے, یہ اسے واپس درست کرنے میں لگا رہتا ہے, کیونکہ وہ آدمی ایمان رکھ رہا ہے. وہ واقعی ایمان رکھ رہا ہے. میں نے سامعین میں سے ہر طرف دیکھا اور یہ براہ راست اس آدمی پر ٹھہر گیا. اس کی کچھ ضرورت ہے, اس کو بوجھ ہے, لیکن یہ بوجھ کسی اور کے لیے ہے. یہ سچ ہے. آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں, آپ کے دل میں کوئی اور ہے. یہ سچ ہے. کیا یہ درست بات نہیں ہے؟ یہ ایک دوست ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس دوست کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, تو کیا آپ مجھ پر خدا کا خادم ہونے کا یقین کریں گے؟ وہ شرابی ہے. یہ سچ ہے. اگر یہ سچ ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ یہاں کوئی اور ہے جس نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے. یہاں پیچھے ایک عورت موجود ہے, یا کوئی اور ہے؟ ہاں جی ہاں. آپ مجھے نہیں جانتی, میں آپ تمام کے لیے اجنبی ہوں. میں آپ کو نہیں جانتا, لیکن خدا آپ کو جانتا ہے. کیا آپ ایمان رکھتی ہیں؟ اگر خدا مجھ پر ظاہر کر دے کہ آپ کے دل میں کیا ہے, تو کیا آپ مجھ پر اس کا خادم ہونے کا یقین کریں گی؟ ادنا خاتون, آپ کو جو تکلیف ہے وہ وہاں موجود اس بچے کی بابت ہے. یہ درست ہے. اور اس بچے کے چہرے پر چمبل ہے, اور ڈاکٹر اس کے متعلق کچھ نہیں کر سکتا. آپ اور آپ کے عزیز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ یہاں پر اجنبی ہیں. کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کہاں سے آئی ہیں؟ کیا آپ ایمان رکھیں گی؟ اگر وہ شفا دے دے گا, تو کیا آپ بچے کی شفا کو قبول کریں گی؟ ٹھیک ہے, آپ واپس سمرسیٹ کینڈگی جا سکتی ہیں جہاں سے آپ آئی ہیں, اور ایمان رکھیں کہ وہ تندرست ہو جائے گا. اگر آپ اس پر ایمان رکھ سکتی ہیں, تو وہ چمبل بچے کو چھوڑ دے گا. جب میں نے یہ لفظ ادا کیے, تو کوئی وہاں پیچھے ہال میں کھڑا ہو گیا جو دل کے عارضے میں مبتلا ہے اور دعا کر رہا ہے, جو کہ سمرسیٹ کینٹکی سے ہے. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تندرست کر دے گا؟ اگر آپ پورے دل کے ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہیں, تو ایمان رکھیں کہ خدا شفا دے دے گا اور اسے تندرست کر دے گا. یہاں پر دیکھتے ہیں, مجھے یقین ہے کسی نے اپنے ہاتھ ٹھیک یہیں پر ٹھیک ایک ساتھ ہی اوپر اٹھائے ہیں, جو کہ خاتون ہے. جی ہاں, میں نے آپ کے ہاتھ دیکھے ہیں. کیا میں آپ کے لیے اجنبی ہوں خاتون؟ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں, ہم پہلے کبھی نہیں ملے. کیا آپ مجھ پر اس کا خادم ہونے کا یقین کرتی ہیں؟ کیا آپ کرتی ہیں؟ آپ نے اپنے دل پر بوجھ لے رکھا ہے یا کچھ اور ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا اس بات کو مجھ پر ظاہر کر سکتا ہے؟ تو کیا آپ ایمان رکھیں گی کہ یہ بالکل وہی روح ہے جو مسیح میں تھا؟ آپ کا شوہر یہاں بیٹھا ہوا ہے, کیا وہ بھی بالکل اسی بات پر ایمان رکھتا ہے؟ کیا آپ بھی بالکل اسی بات پر ایمان رکھیں گے؟ تو یہ بات آپ کی چھوٹی لڑکی کے متعلق ہے جو آپ کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی ہے. یہ سچ ہے, اور اسے کینسر ہے. لیکن کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اسے شفا دے گا؟ اگر آپ رکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھائیں. ٹھیک ہے, تو پھر اپنے ہاتھوں کو بچی پر رکھیں. خداوند یسوع, تیرے روح کی موجودگی میں میں شیطان کو رد کرتا ہوں جو بچی کو ہلاک کر رہا ہے, اور ایمان کے وسیلے میں اس بچی اور ہلاک کرنے والے کے درمیان یسوع مسیح کا خون چھڑکتا ہوں. اسے زندگی بخش دے. آمین. خدا پر ایمان رکھے, شک مت کرے. اگر تو ایمان رکھے گا تو سب کچھ ممکن ہے. اگر آپ ایمان رکھ سکتے ہیں تو سب کچھ ممکن ہے. یہ درست ہے. کہیں کوئی اور وہاں پیچھے ہے جس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا ہے؟ آپ خاتون جو وہاں آخر میں موجود ہیں, کیا آپ مجھ پر خدا کا خادم ہونے کا یقین کرتی ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا, اور نہ ہی آپ مجھے جانتی ہیں. کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا مجھ پر ظاہر کر سکتا ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو کیا پھر آپ یسوع کو اپنا شافی اور مہیا کرنے والا قبول کریں گی؟ یہ جو کچھ بھی ہے تو پھر کیا آپ اس پر ایمان رکھیں گی؟ ٹھیک ہے, تو پھر وہ گھبراہٹ کے دورے ہیں جو آپ کو پڑ رہے ہیں, یہی ہے جو آپ کو تھا. اگر یہ سچ ہے تو اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے. अगर ये बात सच है, बस इसी तरह लोग देखेंगे कि ये सच्चाई है। ठीक है, ये अभी आपको छोड़ जाएंगे। आप घर जाएं और तंदुरुस्ती पाएं। खुदा आपको बरकत दे। आप भी केंटकी से हैं और ये बात सच है। इसी तरह आपसे आगे बैठी हुई खतून भी केंटकी से है। इसी तरह वो भी है। मैं आपको नहीं जानता, क्या मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर मैं आपको बता दूँ कि आपके साथ क्या गलत हुआ है, तो क्या आप मसीह को अपना शाफी कबूल करेंगी? ये आपके कुलों पर है। अगर ये सच है तो अपने हाथों को अच्छे तरीके से ऊपर बुलंद करें, ताकि लोग देख सके। ठीक है, अब घर जाइए, ये आपको छोड़ देगा। आपका ईमान आपको तंदुरुस्त करेगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप ईमान रखें। मैं आपके एतकाद को चैलेंज करता हूँ कि ईमान रखें। यहाँ एक खातून बैठी हुई है जो अपने रुमाल को अपने चेहरे पर रखकर दुआ कर रही है। मैं आपको नहीं जानता, खुदा आपको जानता है। आप जूलियट इलिनॉय से हैं और आपको एक रसोली है, और ये बिल्कुल सच है। हो सकता है आप हैरान हो। जी हाँ, यही औरत है जिसको रोजेला लाई है। ये दुरुस्त है। एक मिनट, उसने मुझे इसके मुतलक बताया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैं पहले कभी इस औरत को नहीं मिला। ये दुरुस्त है। ये सिर्फ इसलिए हुआ, इस औरत का ईमान बहुत अजीम है। मैं आपको एक बात बताऊंगा। आप जानती हैं कि मैं इसके मुतलक नहीं जानता, लेकिन आप इस बच्चे के लिए जो नशिस्त के आखिर में बैठा हुआ है दुआ कर रही हैं, जो कि बीमार है। ये आपका बच्चा है, ये सच है। आमीन। आप जानती हैं कि मुझे इसके मुतलक कुछ इल्म नहीं था। वो यहाँ है, रूल कुछ यहाँ है। क्या आप इस पर ईमान रखती हैं? क्या आप उसे कबूल करती हैं? तो फिर ये सच है। मैंने उसके मुतलक कहा था, वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है। ये दुरुस्त है। यीशु मसीह खुदा का बेटा ठीक अभी यहाँ मौजूद है। जिंदा खुदा का रूह ठीक यहाँ मौजूद है। क्या आप इसका यकीन करते हैं? तो फिर आप जानते हैं कि ना मैं ना ही कोई और शिफा दे सकता है। मैं कोई शाफी नहीं हूँ, लेकिन खुदा के रूह ने सिर्फ मुझे चुना ताकि खुद को जाहिर करे। मेरी कोई तालीम नहीं है, मेरे पास तो किसी चीज का इल्म भी नहीं है, लेकिन आप देखें कि ये उसका रूह है जो ऐसा करता है, और वो चाहता है कि आप जाने कि मैंने आपको सच्चाई बताई है। ये सच्चाई है। अगर आप उस पर ईमान रखेंगे तो यीशु मसीह ठीक अभी आपको तंदुरुस्त कर सकता है। अब जैसे कि उसने वहाँ किंगस्टन में काम किया, जहाँ मिशनरी या बहुत सारे थे, और उन्होंने उसे किंगस्टन में काम करते देखा कि हजारों ने शिफा पाई, तो फिर क्यों ये यहाँ इस अमेरिका में काम नहीं करेगा जहाँ हम उसी तरीके से मौजूद हैं? तो फिर क्यों हम इस पर ईमान नहीं रख सकते, क्योंकि हम वहाँ आगे उस छोटी सी लहर को पार नहीं कर सकते? क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? तो अपने हाथों को बुलंद करें। अब बिल्कुल उन्हीं हाथों को अपने से आगे किसी पर रखें और मुझे ठीक यहाँ से उनके लिए दुआ करने दें। अपने दिल में जरा भी शक ना करें, ये उसे खत्म कर देगा। ओ मेरे खुदाया, भाई नेवल, मैंने कितनी आरजू की, मैंने कितनी दुआ की, कितनी बार मैंने, शायद आप सोचते हैं कि मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ ठीक जहाँ मैं हूँ। अगर मैं ये मामूली सी बात आप तक पहुंचा पाऊं, क्या आप महसूस करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा ठीक अभी आज सुबह लोगों के दरमियान ठीक अभी मौजूद है और खुद को जाहिर कर रहा है? ठीक है, आप कहते हैं भाई ब्रैनम आपने ऐसा कहा है, मैंने ऐसा क्यों कर कहा? मैं आपको नहीं जानता हूँ। यहाँ एक और खातून है जिसको टीबी है। बहन जी, आपको शिफा मिल चुकी है, खुदा आपको बरकत दे। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप एक औरत के लिए दुआ कर रही हैं जिसको टीबी है, क्योंकि वो सफेद बालों वाली औरत है। जी हाँ, ठीक है, इस पर ईमान रखें। ठीक है, वो यहाँ मौजूद है, यही उसकी मौजूदगी है। उसने यहाँ क्या कहा? यही के जो ईमान लाएंगे उनके दरमियान मौजूदे होंगे। अगर वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। वो कैसे झूठ बोल सकता है? देखें, ये उस पर मुनसर नहीं, ये मुझ पर मुनसर नहीं, अब ये आप पर मुनसर है। अब आप ईमान रखें। मैं ठीक अभी ही एक अदना खातून को पीछे बैठे हुए देख रहा हूँ। उसका ईमान बहुत बड़ा है। वो और उसका शोहर नए नए खुदावंद में आए हैं, और वो ठीक इस इबादत में एक जख्म के साथ बैठी है। इससे पहले के डॉक्टर उसकी हरनियों का ऑपरेशन करता, उसके बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, और डॉक्टर उसके बाद ऑपरेशन करने वाला था, और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो वो हरनिया तलाश ही न कर पाए, वो सब कुछ गायब हो चुका था। देखें, क्यों ये बिल्कुल इस तरह बैठी है, और वो इस तरह प्लेटफॉर्म के ऊपर भी नहीं आई, वो सिर्फ पीछे बैठी रही और उस पर ईमान रखा। क्या ये दुरुस्त है? मिसेस ग्रीन, मुझे उस पर यकीन है। क्या पीछे मौजूद है? ये सच है। क्या उसके हाथ को देखा? यहाँ तक कि डॉक्टर जख्म तलाश नहीं कर पाए, ये सब कुछ जा चुका था। क्यों? उसने उस पर ईमान रखा, सिर्फ कदम आगे बढ़ाया और कहा ये सब ठीक हो गया है। आप भी बिल्कुल वैसे ही करें, और आपको जो हर किस्म की तकलीफ है उसे छोड़ना पड़ेगा। खुदा जो एक इंसानी बदन में कोई चीज बेच सकता है, ताकि उस सांप के काटने की सूजन को जो उस शख्स के पांव पर थी और जहर फैल रहा था कि उसे हलाक कर देता, और उसे रोक सकता है और ठीक वहीं खत्म कर सकता है, तो उससे कहीं बढ़कर वो आपके बदन की बीमारियां खत्म कर सकता है, क्योंकि वो आदमी अजियत में था और उसको उसकी मदद करनी पड़ी। आपको भी उसे लेना पड़ता है। अगर आप उसे नहीं लेते तो आप मर जाते हैं। अब अपने हाथ एक दूसरे पर रखें। आपने अपने लिए दुआ नहीं करनी, आपने अपने से आगे वाले शख्स के लिए दुआ करनी है। ये मसीही अक्स है। ये सीखें। जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो तो तुम मसीह के साथ करते हो। जब तुम किसी दूसरे से अच्छा करते हो तो तुम मसीह के साथ कर रहे हो। अगर तुम किसी दूसरे के साथ बुरा सलूक करते हो तो तुम मसीह के साथ बुरा सलूक कर रहे हो। ओ मेरे खुदाया, हो अगर मैं सिर्फ इसे आगे पहुंचाऊं, अगर मैं लोगों को सिर्फ यही दिखा पाऊं जो कि मैं देख रहा हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो मैं जानता हूं, जो वाकई हो रहा है, समझे? कैसे मसीह आज सुबह इस पैगाम पर जोर दे रहा है ताकि ठीक लोगों के दिलों में दाखिल हो जाए और वो वहां कुछ ऐसा तख्लीक करे, ना कि कोई जोश, ना कोई जाहिरी जज्बा, ये इसके साथ आता है, बल्कि यहाँ एक ना खत्म होने वाला ईमान पैदा हो जाए जो ये नहीं कहेगा कि एक इंच भी दुश्मन को दिया जाए। अब वो मेरी दुआ को सुनेगा, वो आपकी दुआ को सुनेगा। अब आप एक दूसरे के लिए दुआ करें जबकि मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, इस अजीम फैसला कुल लम्हे में हम ये महसूस करते हैं कि इसका मतलब है कि बहुत से लोगों में जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क जाहिर होने वाला है। और खुदावंद खुदा, मैं तेरी हजूरी में थरथराता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे लाजमी अपने पूरे दिल के साथ दुआ करनी है। और मैं महसूस करता हूँ यहाँ तक कि अगले 5 मिनटों में हमारे दरमियान एक भी शख्स बीमार ना रह जाए, इसलिए कि हर शख्स यहाँ पहचान जाए कि तू यहाँ मौजूद है। खुदावन, ये लोग आज सुबह यहाँ खड़े हैं। इन लोगों को अपने हाथ खड़े करने दे जो जानते थे कि मैं इनको नहीं जानता और न ही इनके मुतल्लिक कुछ जानता हूँ, लेकिन तेरा रूह इन्हें जानता है। तू इनके दिल के भेदों को जानता है। इससे भी कितना बढ़कर तू इनकी तकलीफों और इनकी मुसीबतों को भी जानता है। तो फिर खुदावन, आज ऐसा होने दे, अभी ऐसा होने दे, यहाँ तक कि अब तेरा रूह इनके बीमार बदनों को छुए। खुदावन, ये बख्श दे, ये लोग एक दूसरे के लिए दुआ करें। और प्यारे खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि रूल कुछ इसे इन लोगों के लिए बहुत ही हकीकी बना दे, ताकि ये लोग दोबारा इस पर कभी भी बेतकादी ना कर पाए। खुदावन, यहाँ एक और भी बीमारी है जो कि जिस्मानी बीमारी से बहुत बढ़कर है, और ये रूहानी बीमारी है, इसलिए हर एक दिल खुल जाए। खुदावन, ये कैसे हो सकता है जबकि तू वहाँ इब्राहिम के पास खड़ा था और बिल्कुल इसी काम को कर रहा था, सारा को बताया जो कि तेरी पिछली जानी बैठी हुई थी। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि खैमे के अंदर वो हंसी और तूने उसे बता दिया, और इब्राहिम पहचान गया कि तू एलोहिम अजीम खुदा है, और कुछ ही मिनटों में तू उसकी नजर से गायब हो गया। और खुदावंद, जब यीशु खड़ा हुआ और बिल्कुल इसी काम को किया और कहा, तुम इब्राहिम को अपना बाप कहते हो और कहते हो कि तुम किताब मुकद्दस को जानते हो, कहा तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना ही किताब मुकद्दस को जानते हो और ना ही खुदा की कुदरत को, और उन्होंने उसे बालजबूल कहा। लेकिन तूने इसका वादा किया है कि आखिरी दिनों में तू अपनी रूह को दोबारा नाजिल करेगा। नबी ने कहा है कि शाम के वक्त रोशनी होगी, और हम इसी वक्त में हैं। ये जना से पैदा शुदा दुनिया गुनाह के मुतहत लड़खड़ा रही है जैसे एक शराबी रात को घर में लड़खड़ाता है, यहाँ तक कि आतिश फिजा की धूल भी ना होगी, मुश्किल ही से इसका कुछ बचेगा और जल्द ही दुनिया खत्म हो जाएगी। और हम देखते हैं कि वक्त तेजी से गुजर रहा है। ऐ खुदा, हर शक को हमसे दूर कर दे, अभी हमें उस दायरे में धकेल दे। रूल कुछ आ और अपने अजीम परों को फैला, और इस छोटी सी जमात के लोगों को अभी ही अपने परों तले छुपा ले, और खुद को इनके दिलों में लबरेज होने दे, और इन्हें जानने दे कि तू ही इलाही हजूरी में है, जैसा कि ये तू है। मैं ही खुदावंद हूँ जो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता हूँ, और तेरी हजूरी इनके दिलों में कुछ करे जो सबब बनेगा कि जब ये लोग यहाँ से जाएं तो इस सुबह जो कुछ उनके अंदर है उस सब के साथ ईमान रखें, और हर एक बीमार और मुसीबत ज्यादा शख्स शिफा याब हो जाए। तेरा खादम होते हुए मैं खड़ा होता हूँ और हर एक अबलीस को रद्द करता हूँ, बीमारियों को रद्द करता हूँ, शैतान को रद्द करता हूँ। तू हारा हुआ है और तू एक धोखेबाज के अलावा कुछ भी नहीं है, और हम आज सुबह तेरे हरबों को खुदावन यस्सु के नाम में पहचानते हैं। और उसका खादम होते हुए उसका कलाम सुनाया गया है, और लोगों को मैंने सच्चाई बताई है ताकि दुरुस्त हो जाएं और खुदा के कलाम के साथ तर्तीब में आ जाएं। शैतान, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूँ। इन लोगों से जो दूर और नजदीक से शिफा पाने आए हैं, ان لوگوں سے دور ہو جا, ان سننے والے لوگوں سے دور ہو جا. میں تجھے زندہ خدا کے وسیلے حکم دیتا ہوں. اور بائبل فرماتی ہے کہ راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور یہاں آج صبح بہت سارے راستباز آدمیوں نے اپنے ہاتھ بیماروں پر رکھے ہوئے ہیں. او شیطان, تو ان لوگوں کو ایسی سوچ دینا پسند کرے گا کہ یہ میں ہوں, تاکہ پھر تو ان سے جلال کو چھین لے. لیکن ان کا بھی خدا پر بھروسہ ہے اور یہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں, اور تجھے ان کے ایمان کے ذریعے مڑنا ہی پڑے گا. اس لیے اپنی موجودگی کو یہاں سے دور لے جا اور باہر تاریکی میں چلا جا جہاں سے تیرا تعلق ہے. اور میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے, خدا کی بائبل کے اختیار سے اور اپنے اس اختیار سے جو فرشتے کے ذریعے مجھے ملا تھا, رد کرتا ہوں. اب یسوع مسیح کے نام سے چلا جا اور ان لوگوں کو آزاد ہونے دے. آمین. کیا آپ اپنے پورے دل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ شفا یاب ہو گئے ہیں؟ اپنے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں, اب میں یسوع مسیح کو اپنا شافی قبول کرتا ہوں. تمام سائے مجھ سے غائب ہو چکے ہیں اور اب میں اسے اس کی قدرت کی معموری میں اور اس کی رحمت کی معموری میں قبول کرتا ہوں. میں اسے قبول کرتا ہوں. میرا ایمان تجھ پر لگا ہے, تو کلوری کا برا ہے اور الہی نجات دہندہ ہے. میں دعا کرتا ہوں تو میری سن, میرے تمام گناہوں کو دور کر دے. تو مجھے کبھی بھی اپنی طرف سے بھٹکنے نہ دینا. اب آئیے ہم اس کے لیے اپنے حقیقی پیار بھرے ہاتھ اٹھائیں. جبکہ میں زندگی کے تاریک آڑے ترچھے راستوں پر چلتا ہوں اور دکھ تکلیفیں میرے چوگرد پھیلتی ہیں, اے میرے خداوند تو ہی میرا رہنما ہونا. جب تاریکی مڑ کر دن کا اعلان کر رہی ہو, دکھ اور مصیبت اور خوف دور ہو رہے ہو, تو مجھے کبھی بھی اپنی طرف سے بھٹکنے نہ دینا. باکثرت فضل,